السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے، یعنی آج کی رات جو شب برات کے نام سے اپنے درمیان میں موسوم ہے، یعنی ہمارے درمیان میں اس کا نام شب برات ہے، لیلۃ البراء. چونکہ اس میں لوگوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ البرات پڑھا ہے. اور وہ حدیث شریف میں اس کا مضمون پایا جاتا ہے. یہ ہماری زندگی میں جو ترتیبیں بنی ہوئی ہیں سال کی، مہینے کی، اس میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے یہ رات. یعنی جیسے شمسی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو جنوری کا پہلا سال ہے. ہماری مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کا پہلا دن ہے، جنوری کا پہلا دن ہے. لوگوں کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے، وہ ان کا پہلا دن ہے. شادی ہوئی لوگوں کی، شادی کا پہلا دن ہے. یہ مختلف قسم کے جو دن آتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم یہ لیلۃ النصف من شعبان ہے، کیونکہ یہ ہماری سالانہ تقدیر کا پہلا دن ہے، قسمت کا پہلا دن ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. یہ سیلری سے بھی زیادہ اہم ہے. رسک ملے گا تو سیلری آئے گی تو پھر آپ ٹیکس بھریں گے، تو ٹیکس سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو اس وجہ سے کہ آج کی رات جو ہے وہ انسانوں کے مقدرات کو فرشتوں کے حوالے ایک سال کے لیے کر دیا جاتا ہے، لوح محفوظ سے احکام کو ایک سال کی بیس پر مفوضہ، جن کی جو ذمہ داریاں ہیں فرشتوں کی، ان کو وہ چیزیں سپرد کر دی جاتی ہیں کہ اس سال کون کون مرنے والا ہے، وہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، وہ حوالے کر دیا جاتا ہے. اب آپ اس صورتحال کا اندازہ کیجئے کہ آج کی رات میں کس کا نام فرشتوں کو دیا جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلتا. مقدر جو ہے انسان کا عمر کے اعتبار سے بھی طے ہے. جب آدمی ماں کے پیٹ میں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اکتب، لکھو. وہ پوچھتا ہے کہ ماذا اکتب، کیا لکھو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر لکھ دو، کہ یہ دنیا میں جا کے کتنے دن رہے گا. اب اس میں کمی نہیں ہوتی زیادتی نہیں ہوتی. البتہ کمی اور زیادتی کی کچھ صورتیں ہیں جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہوتی ہے کہ بعض کمی زیادتی مشروط ہوتی ہے, شرط کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے کوئی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی, نہیں کرے گا تو نہیں بڑھے گی. صلہ رحمی کرے گا, اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا, اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. قطع رحمی کرے گا, تعلقات توڑے گا تو اس کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوگا, اس کے رزق میں بھی تنگی ہوگی. ایسے ان کو مشروطی تقدیریں کہتے ہیں, تقدیر معلق بھی بولتے ہیں اس کو, اور تقدیر مبرم ایک ہوتی ہے. ایک وہ تقدیر جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہوتی اس کا نام مبرم ہے, اور جس میں تبدیلی ہونے والی امکانات رکھے جاتے ہیں اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. تو ایک یہ چیز لکھ دیتا ہے فرشتہ, اور دوسرے اللہ پاک اسے فرماتے ہیں کہ اس کا رزق کیا ہوگا وہ لکھ دے. تو آدمی دنیا میں جتنا بھی رزق پانے والا ہے, کھانے پینے کی لائن سے ہو یا جو ہے اس کی قسمت میں جو بھی ملنے والا ہے, جو ملنے والا ہے وہ طے کر دیا جاتا ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا زیادہ, ہم رزق ہی کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں. اسلام رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کو منع کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کھلانے کی ترغیب دیتا ہے, خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے. بہت کم لوگ اس راز کو جان پائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی مکہ مکرمہ میں, تو جو پہلے پہلے آپ خطبہ دیتے تھے شروع میں, احکام تو تھے نہیں, اس میں آپ یہی فرماتے ہیں, ایوہ الناس افشوا السلام, اطعموا الطعام, علین الکلام, صلوا باللیل والناس نیام, تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں, سلام کو آپس میں پھیلاؤ, سلام کرو. جتنا زیادہ سلام کریں گے اتنی زیادہ رحمت اللہ پاک کی متوجہ ہوگی, کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے, اللہ کی صفت ہے. اور سلام سے معاشرہ جو ہے, سلام اگر شعوری سلام ہو جائے نا, تو معاشرہ اتنا اطمینان بخش, تسلی بخش ہوتا ہے جس کی حد نہیں. کیونکہ سلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تین چیزوں کی ضمانت دیتا ہے, گارنٹی دیتا ہے, کہ جان اور مال اور عزت. میری طرف سے تمہاری جان اور تمہارے مال کو اور تمہاری عزت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں, اس لیے سلام کر رہا ہوں. یہ ہے سلام کے پیچھے, یہ تین چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. تو آپس میں تعلقات صحیح رکھنے کے لیے, ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے, تسلی رہنے کے لیے سلام کا رواج ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ, کماؤ تاکہ کھلاؤ, یہ نہیں بولتے تھے حضور کبھی بھی. یہ کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کیسے؟ یہ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ تم کون ہوتے ہو کھلانے والے, اور تم کون ہوتے ہو کمانے والے. کمانے پر بھی تم کو جو ملتا ہے وہ تمہارے کمانے کی وجہ سے نہیں ملتا, تقدیر کی وجہ سے ملتا ہے. اور اگر تمہارے گھر میں کوئی کمزور ہے, بیمار ہے, اپاہج ہے, پھر تو تم لکی ہو. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ انتم ترزقون بضعفائکم, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. جس کے گھر میں کوئی معذور بہن ہو, خاتون ہو, بیوہ عورت ہو, یا خاندان کی بوڑھی ہو کوئی, مہمان آ کے رہ گیا ہو, برا ماننے کی بات نہیں ہوتی, یہ تو مزے کی چیز ہے. تو حضور فرماتے کھلاؤ, ہوگا تو کھلائے گا نا, بھائی تم کھلاؤ تو صحیح, جو تمہارے پاس ہے وہ کھلاؤ, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. کھلانے کا راز ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آمد شروع ہو جاتی ہے. چونکہ جب کھلانے کی اس کو عادت ہوتی ہے تو جس کی روزی ہوتی ہے مقدر, وہ اس کے پاس بھیجے جانی شروع ہو جاتی ہے. जो आदमी खिलाने वाला है उसके पास भेजी जाने शुरू हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की आदत यह है कि जब किसी की रोजी आपके पास भेजी जाएगी तो सिर्फ उसकी भेजी जाएगी और आपकी छोड़ दी जाएगी, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप खुद जो है ना किसी को खाना खिलाते हैं तो अगर दो आदमियों को खाना खिलाया तो ठीक दो आदमियों का हिसाब करके भेजते क्या? दो आदमियों के खाने में चार छः आदमी आराम से खा लेता है। अपनी रोजी मुफ्त में आना शुरू हो जाती है दूसरे को खिलाने की आदत डालने पर। अल्लाह पाक की आदत है, सुन्नत है, जो चाहे तजुर्बा कर सकता है। और बुजुर्गाने दीन ने तो इस राज को ऐसे पा लिया था कि वो खिलाने में दो चार पर इक्तफा नहीं करते थे, हजारों को खिलाते थे रोजाना और लाखों को खिलाते थे रोजाना। आप बोलेंगे कि लाखों को कौन खिलाता है जी? ऐसे वक्त गुजरे हैं लोगों पर, हमें पता नहीं है, हम कंजूस लोग हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, मौलाना अली मियां साहब ने लिखा है, वो भी पक्का आदमी है, कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तरखान का रोज़ाना का खर्च 100 kg नमक का था। नमक कोई खाता तो नहीं, वो तो डाला जाता है आटे में या सालन में। 100 kg नमक जिसके खर्च में रोज़ाना हो, कितने आदमी को खिलाता होगा वो बंदा? और इस पर मजीद बात समझने की जो है वो ये है कि उनका जरिया आमदनी क्या था। उनसे पूछा गया कि आप इतना लोगों को खिलाते हैं, इतना लंगर है आपके पास, खिलाते कहाँ से आप? कहने यहीं से तो खिलाता हूँ, यानी मेरा जरिया आमदनी यही है कि मैं खिलाता हूँ, ये फरमाया। मुसलमानों ने इस राज को भुला दिया सब। देखने में मुसलमान फ़कीर होता है लेकिन फ़कीर उसकी फ़कीरी बड़ी अजीब होती है। आके खोया गया तुझसे फ़कीरी का राज, वरना है माले फ़कीर सल्तनत रूम और शाम। रूम और शाम बोले तो अमेरिका और रशिया, उस ज़माने के अमेरिका रशिया वही था, दोनों की एक जेब में ये एक जेब में वो, फ़कीर के जेब में दो होते हैं बोल के अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं। आके खोया गया तुझसे फ़कीरी का राज, वरना है माले फ़कीर सल्तनत रूम व शाम। हक़ तआला शानहू पर एतमाद है असल ज़रिया आमदनी। जितना ज़्यादा तवक्कुल बनाएगा बंदा उतना ज़्यादा उसको मिलेगा, और अगर तवक्कुल बन गया तो कुछ कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये जो कोशिश है कमाई के लैन की, शरीयत ने जो इजाज़त दी है, हुक्म भी दिया है, बाज़ मौके पर फ़र्ज़ भी है, ये कमज़ोर ईमान वालों के लिए है, ताकतवर ईमान वालों के वास्ते नहीं है चीज़, क्योंकि असबाब ज़न्निया में से है। असबाब दो किस्म के होते हैं, असबाब यकीनी और असबाब ज़न्नी। जो सबब अल्लाह ने दुनिया में बनाए हैं वो दो तरह के हैं, एक यकीनी है यानी ऐसा जोड़ है दो कामों का कि अल्लाह पाक ने लाजिम मलजूम का ताल्लुक रखा है, जैसे खाना खाने से ज़िंदा रहना, पानी पीने से ज़िंदा रहना, शादी करने से औलाद होना, ये सबब यकीनी है। इनको छोड़ने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। अगर कोई आदमी ये समझ के कि अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर कोई नहीं खाएगा और मर गया तो ख़ुदकशी का गुनाह है उसको। खाने से तो नहीं पलता बंदा, पालते तो अल्लाह है, फिर ऐसा क्यों है? अरे पालते तो अल्लाह है लेकिन अल्लाह पाक को चैलेंज करने वाले आप कौन होते हो? उनको क्यों पाबंद बना रहे हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू पाल के बताओ? क्यों भाई, क्यों बताओ पाल के तुझे? अल्लाह तआला अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई शर्त नहीं लगा सकता इसे, इस वजह से गुनाह है उसका। उनको असबाब यकीनी कहते हैं। असबाब ज़न्नी जो है ना, जैसे दवा खाना इलाज के वास्ते, सबब यकीनी नहीं है। दवा खा के भी आदमी मरता है, नहीं खा के भी बच जाता है, सबब ज़न्नी है। कमाना भी असबाब ज़न्निया में से है। जिसका जितना ज़्यादा जहन अल्लाह ताला के साथ में बनता चला जाए, वो अपनी कमाई को कम करता चला जाए, कमाने के निज़ाम को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसकी कमाई में, इजाफा हो जाता है। اسباب ذنیہ کی یہ خصوصیت ہے. اگر آپ کا توکل مضبوط ہے, قوت ہے آپ کے پاس, نظر آپ کی اللہ پر ہی ہے, دل ڈھیلا نہیں ہو جائے گا, گھبرا نہیں جائے گا, مانگنے پہ نہیں آ جائیں گے لوگوں سے, برداشت کرنے پر برداشت کر سکیں گے, مت کماؤ آپ مزے میں رہتے. یہ تجربہ ہے بزرگوں کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھا, وہ کانپور میں پڑھاتے تھے, کہ حضرت میں آنا چاہ رہا ہوں سب چھوڑ چھاڑ کے, خانخواہ میں رہ جانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں, تم پڑھاتے رہو, سننا مت, نوکری چھوڑو مت. تو ایک سال تک پھر پڑھاتے رہے, لیکن ان کی طبیعت چاہی نہیں. ایک سال کے بعد کیا کرے, پھر چھوڑ کے آگے خود ہی خانخواہ میں آگے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا چھوڑ کے آگے. میں گزشتہ سال آپ کو خط لکھ کے پوچھا تو آپ بولے نہیں نہیں نہیں, تو نوکری کرتے رہو. اب اگر میں چھوڑ کے آ گیا تو آپ بول رہے ہیں بہت اچھا کیا. تو بولے تیرا پوچھنا تیرے کمزوری کی علامت تھی, پوچھنا تمہارا ابھی بنا نہیں, وہ جو گمان اللہ سے بننا چاہیے نا کہ ضرورت نہیں ہے مجھے, بولے وہ بنا نہیں تھا ذہن, وہ کمزوری کی علامت تھی, اس لیے میں نے منع کیا. اور جب چھوڑ کے آ گئے تو جب آدمی چھوڑ دیتا ہے تو وہ کمزوری کہاں تھی اس کے پاس, لہٰذا میں نے کہا تم نے بہت اچھا کیا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پھر جو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے فتوحات کو, ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اگر میں چاہوں تو سونے کی اینٹوں سے مکان بنا سکتا تھا. اتنا اللہ نے پھر دیا, بلکہ کماتے کچھ بھی نہیں تھے. یہ اسباب ذنیہ ہیں. خیر یہ بات اس پر چلی میرے بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق لکھ دیا جاتا ہے. جتنا زیادہ آدمی اللہ پہ نظر رکھے گا اتنا زیادہ اس کو آسانی سے مل جائے گا, اور بغیر مقدر کی روزی لیے کہ کوئی آدمی مر ہی نہیں سکتا. اور روزی انسان کی تلاش میں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے انسان روزی کی تلاش میں ہوتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ, کیونکہ انسان کو روزی کی تلاش کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن روزی کو پہنچنے کی ذمہ داری ہے, یعنی فرشتوں کے نظام کے ساتھ. کہاں کہاں کی روزی ہوتی ہے ہمارے گمان بھی نہیں ہوتا. آپ بیٹھے ہوتے ہیں اچانک کوئی صاحب آ جاتے ہیں, عمرے کو گیا تھا یہ مدینہ منورہ سے کھجور لے کے آیا ہوں آپ کے لیے, آپ کو پتا تھا کہ آپ کے نام کے کھجور وہاں پہ جھاڑ پہ لگے ہیں, ہمارے نام کا کھجور وہاں پہ درخت پہ لگا تھا. اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا کہ بھئی یہ کھجور اس کو پہنچنے کے ہیں, پہنچا دو اس کو. ہم نے کبھی سوچا, ہمیں خواب بھی نہیں پڑا تھا, نہ اس کی ہم نے فکر کی نہ تلاش کی. روزی پہنچ کے رہتی ہے آدمی, مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دو کام کرو, اجملو فی الطلب, کمائی کو مختصر کرو, وتوکلوا علی, اور اللہ پہ بھروسہ کرو. الا ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علی. یہ حدیث شریف ہے. اپنے انڈیا پاکستان میں جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ ہر جمعہ میں یہ حدیث پڑھتے ہیں. یہاں کے چونکہ خطبے الگ انداز کے ہوتے ہیں تو یہاں نہیں پڑھے جاتے, کچھ کوئی کوئی کو پڑھتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو ہر جمعے میں پڑھتے ہیں, مگر وہاں پہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں حضور. اگر کمائی کو مختصر کرنے کا مزاج مسلمان میں نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں کر سکتا, وہ یہ قاعدہ ہے. جیسا چاہیے ویسا نہیں کر سکتا. پیسہ لگا دے گا وہ بھی جیسا چاہیے ویسا نہیں لگا سکتا, ٹائم نہیں دے سکتا, اپنی صلاحیت نہیں لگا سکتا, اپنی جان نہیں کپا سکتا. اور جبکہ جان اور مال دونوں لگنا ہے دین کے لیے, خالی مال لگنے سے تو کام نہیں چلے گا. میں آپ سے بولوں کہ میں $1,000 آپ کو دوں گا, آپ میرے واسطے اتحیات یاد کر دیجئے, یعنی آپ یاد کریں یاد مجھے ہو جائے, ایسا کر دو میں $1,000 آپ کو دے دوں, کر لو گے یہ کام. ہر آدمی کو اپنی جان کا بھی حصہ دین کے لیے دینا پڑتا ہے, اور کتنا دینا پڑتا ہے اتحیات یاد کرنے کے اتنا دینا نہیں ہے, اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے, دنیا میں دین پھیلے اس کے لیے دینا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے جب تک آدمی کمائی کے نظام کو قابو میں نہیں لائے گا نہیں ہو سکتا. وہ ایجوکیشن اور کمائی یہ دونوں غیر مسلموں سے ہم نے لیے ہیں, یاد رکھ لو. ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس زمانے میں وہ, اور کمانے کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں سے ہم نے لیا ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے. और आखिरत की तैयारी उनके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उनकी ज़िंदगी के स्केड्यूल में है ही नहीं वो चीज़, इसलिए वो उनके निज़ाम ही अलग है। इसी वजह से आप देखेंगे कि उनके एजुकेशन में केजी से लेके यूनिवर्सिटी तक आप चले जाओ, एक भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि इंसान दुनिया में क्यों पैदा किया गया, ये नहीं मिलेगा कि इंसान का खालिक उससे चाहता क्या है, कौन है, उसकी क्या सिफात हैं, वो किन चीज़ों से खुश होता है, वो किन चीज़ों से नाराज़ होता है, इंसान की ज़िंदगी का अंजाम अच्छा कब होता है, ख़राब कब होता है। जिसमें इस टॉपिक से बहस न हो उसको इल्म नहीं कहते उसूल, इसको इल्म कहते हैं जिसमें ये चीज़ों से बहस होती है, और इसको अल्लाह ने वही के ज़रिए से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, क्योंकि उनका निज़ाम नहीं है वो, इस वजह से उनके एजुकेशन में है ही नहीं। हम भी अपने बच्चों के साथ यही शुरू ये कर देते हैं, उनको केजी से लेके यूनिवर्सिटी तक पहुँचाते हैं, जो फिक्र चाहिए उनकी नहीं कर पाते। कमाने के निज़ाम में भी हमसे यही गलती हो रही है, हुई है। हम सोचे 12 महीने कमाना है, जकमारी करना है, भाई 8 महीने कमा के भी आप 12 महीने का ले सकते हो अल्लाह से, 4 महीने कमा के भी 12 महीने का ले सकते हो अल्लाह से, 2 महीने कमा के भी 12 महीने का ले सकते हो अल्लाह से, और जैसे मैंने कहा ना, नहीं कमा के भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो जो फरिश्ते से कहा कि रिस्क लिख दे इसका, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी कि ये कमाए तो देना, नहीं तो नहीं देना। वो और तीसरी चीज़ जो लिखी जाती है माँ के पेट में, वो इसका अमल क्या है वो लिख दो, क्या अमल करेगा ये। और चौथी चीज़ जो होती है वो ये है कि आखिर में अंजाम इसका अच्छा है या बुरा है वो लिखो। अमल अलग होता है आदमी का, अंजाम अलग होता है, नेकबख्त है या बदबख्त है, शकी है या सईद है, जन्नती है या जहन्नमी है, ये अलग से लिखा जाता है, अमल के साथ जोड़ के नहीं लिखा जाता हो, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। बाज़े ऐसे बातौफीक होते हैं कि शुरू से लेके जन्नत वाले काम करते रहे, उसी पे मरे, जन्नत में चले गए, और बाज़े ऐसे बदबख्त होते हैं कि शुरू से लेके जहन्नम के काम करते रहे, उसी पे मरे और जहन्नम में चले गए। बाज़ इसके अलग होते हैं, शुरू से जन्नत वाले काम करते रहे और जब थोड़ा सा वक्त फासला बाकी रह गया आदमी में और जन्नत में, अचानक जहन्नम के काम शुरू कर दिया और उसी पर मर गया, वो जन्नत में नहीं जाएगा, चूँकि अलइबरत बिल ख़वातिम, एतबार ख़ातिमे का होता है, वो जहन्नम में चले गए। और बाज़े ऐसे होते हैं कि शुरू से लेके बिल्कुल उम्र के आखिरी हिस्से तक बुरे काम करते रहे, बुरे में भी बुरे, शिर्क और कुफ्र दहरियत तक, लेकिन बस मरने से थोड़ा सा पहले अल्लाह ने तौफीक दी, तौबा कर ली, ईमान ले आए और ईमान पर मौत हो गई, जन्नत में चले गए। तो इसलिए अमल अलग लिखा जाता है, अंजाम अलग लिखा जाता है, ये खैर है या शर, ये सईद है या शकी, ये जन्नती है या जहन्नमी है, ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं। ये 4 चीज़ें तय हो जाती हैं, लेकिन हर साल जो है इस तयशुदा निज़ाम की चीज़ें इंसान के मुफव्वज की जाती हैं। इस रात में शब बरात में ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को दे देते हैं कि फलां बंदे के साथ ये फलां बंदे की मौत होगी और फलां के घर में फलां पैदा होगा, कौन पैदा होगा घर में वो भी बता दिया जाता है इस साल, और कौन मरेगा वो भी बता दिया जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी शादी अपनी करने के लिए बाज़ार में गया हुआ होता है कपड़े लाने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, और उसको नहीं मालूम होता कि उसका कफन भी उसी दुकान पर आ चुका है, इतनी वाज़े होती है तकदीर। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की रात, इस वास्ते कि इसमें हमारी उम्र फरिश्तों के हवाले की जाएगी, पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, अल्लाह ताला ये आफियत का मामला करे, हमारी उम्रों में बरकत दे। गुज़िश्ता शब बारात में किसको अंदाज़ा था कि इतने सारे निकल जाएंगे, जिधर जाओ उधर के वो चले गए, कहेंगे हाँ उनका तो गुजर गए, नहीं मालूम आप फलां साहब कैसे, अरे फलां साहब का नहीं मालूम, गुजर गए। दोस्तों में, करीब के रिश्तेदारों में, दूर के रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, इतने तेज़ी से लोग गए हैं इन दो सालों में जिसकी कोई हद नहीं। उम्र के, अच्छी उम्र के, अधेर उम्र के, बूढ़ी उम्र के बच्चे सब, औरतें और मर्द, कुछ भरोसा नहीं अपना भी, आज वो कल हमारी बारी। ताला शानहू ने मेरे दोस्तों जो वक्त दिया है उसको गनीमत समझना है, तो इसलिए आज की रात में अल्लाह तबारक व ताला से मांगना भी है
और इसीलिए आज की रात को लैलतुत तौबा भी कहा जाता है कि चूंकि जब आदमी को ये किसी आदमी को अगर ये मालूम हो कि कल उसको फांसी होने वाली है तो आज की रात क्या करेगा, तौबा किल्ला ही करेगा, भरोसा नहीं है अपना। तो इसलिए अपनी जिंदगी के ऊपर से अपना एतमाद ख़त्म करके हुज़ूर ने फरमाया कि अगर सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करो, शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करो। बहुत से सूरज को देखने वाले तुलू होते हुए ऐसे होते हैं कि उसके गुरूब होने को नहीं देख पाते, बहुत से सूरज को गुरूब होता हुआ देखने वाले ऐसे होते हैं कि उसके तुलू होने को नहीं देख पाते। रोज़ाना रात में हज़ारों आदमी मरता है, उनको थोड़ी मालूम था कि आज मर जाएंगे और सुबह सूरज के तुलू होने को नहीं देख पाएंगे। दिन में हज़ारों आदमी मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, हादसात में, इसमें उसमें। अपनी ज़िंदगी मेरे दोस्तों बहुत ही बेसबात है, पानी है, थोड़ी है, आर्जी है, टेम्पररी है। तो इसलिए आज की रात ये बहुत अहम सबक मिलता है, बल्कि आज की रात इसीलिए शायद इसीलिए भी अहतमाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते थे। ये भी एक वजह उसके साथ में लिंक की तौर पर जोड़ी जा सकती, हो सकता है कि यह भी हिकमत हो कि कब्रिस्तान जाना, अपनी मौत को याद करना, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मगफरत का अहतमाम करना। और वैसे भी चूंकि गुनाहों की माफ़ी की रात होने की वजह से भी कब्रिस्तान जाके उनके लिए भी दुआ करना है, अपने लिए भी दुआ करना है। अपने लिए दुआ तो ज़्यादा मस्जिद में मुनासिब है, उनके लिए वहाँ जाके भी मुनासिब है, और अपने लिए भी वहाँ की जा सकती है और उनके लिए यहाँ भी की जा सकती है, दोनों बराबर हैं। मगर जाने में कि ये भी है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जाने में एक फ़ायदा ये होता है कि अपनी मौत याद आती है और अपने अपने सामने एक नज़ारा होता है। रात के 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे आप जा रहे हैं, क्योंकि अकेले पड़े हुए हैं, सर्दी हो कि गर्मी हो, तन्हाई है, खलवत है, रात गुजर रही है, दिन गुजर रहे हैं, मौसम गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, यहीं तक रहेंगे, क़यामत तक यहीं तक रहें, यहीं पर रहेंगे, यहीं जा नहीं सकेंगे। हर इंसान के साथ यही होने वाला है। रिस्क इसी तरीके पर लिख दिया जाता है, अमल इसी तरीके पर लिख दिया जाता है, फरिश्तों को दे दिया जाता है कि इस साल जो है ना ये रिस्क मिलने वाला है, इसे जो मिलने वाला है वो अल्लाह तआला की तरफ से होगा। किसी को जॉब मिलना भी तय है, किसी को जॉबलेस होना भी तय है, किसी की आमदनी में इजाफा होना भी तय है, किसी का कम होना भी, जिसका जो तय है। और इस इल्म के ज़रिए से जो सबसे अहम बात मुसलमान को हासिल होती है वो है तसल्ली की। ईमान वाला तसल्ली में होता है। तकदीर का जो इल्म होता है वो इत्मीनान के लिए है। तकदीर पर ईमान फ़र्ज़ है, उसके बगैर आदमी ईमान में दाखिल नहीं होता, लेकिन तकदीर पर ईमान का फ़ायदा ख़ास उससे ईमान की हिफाजत है, और फ़ायदा ख़ास उससे आदमी की परेशानियों और स्ट्रेस और टेंशन से हिफाजत है उसको। ईमान वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता अगर उसको ईमानियात याद हों और ईमानियात का वो मुज़ाकरा करता रहे। इन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, उन चीज़ों को कहता सुनता रहे, उस माहौल में बैठे तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है अंदेशे के छा जाने से तबीयत पर, अरे क्या होने वाला है, क्या होता कि क्या है, क्या होता है, वही होगा जो उन्होंने तय फरमाया है, और जो उन्होंने तय फरमाया है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो मैं बीच में खामखा टांग अड़ा के करूँ क्या, और वो मोहब्बत करने वाले हैं तो जो भी मेरे साथ करेंगे वो भला ही करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर ईमान लाने का फ़ायदा ये होता है कि जिस जो आदमी से चीज़ फौत हो जाए उसका आदमी को अफसोस ना रहे, लेकर इलाता असो अलामा फातकुम, और जो चीज़ आदमी को मिल जाए उसमें अकड़ ना रहे, वला तफरहु बिमा आताकुम ना असाबा मिन मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन ज़ालिका अला अल्लाह यसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से लिख दिया है हर वो चीज़ जो तुमको पहुँचे, वो इस वजह से कि लिखे लात असव अला मा फातकुम, ताकि जो तुमसे फौत हो जाए उस पर तुमको अफसोस ना हो। वला तफरहु बिमा आताकुम, और जो चीज़ तुम्हें मिल जाए उस पर अकड़ो मत, जो नियामतें मिली उन पर अकड़ नहीं, क्योंकि जो दिया है वो लेना भी जानता है, और दिया है तो वो क्या है, वो एक नियामत है उसकी और अमानत है मेरे पास, जिम्मेदारी की चीज़ है। जितना दिया उतनी जिम्मेदारी बढ़ गई, जितना नहीं दिया उतनी जिम्मेदारी कम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का उसूल ये है कि मन रज़िया बिलमाल क़लील रज़ियल्लाहु बिलअमल क़लील, जो माल क़लील पर अल्लाह ताला से राज़ी रहेगा, अमल क़लील पर अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाएगा, और जो कसीर का मुतालबा करेगा तो दे देंगे, फिर अमल का भी मुतालबा कसीर का होगा, वो क्या किया फिर, दिया था ना फिर हमने, बला तफरहु बिमा आताकुम, जो मिल गया उस पर अकड़ ना हो, गुरूर नहीं, فرعونیت نہیں, اللہ کی مخالفت اور سرکشی نہیں. فرح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عقل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی من موجی میں آ جاتا ہے, من چاہی میں آ جاتا ہے. میرا پیسہ ہے, میری دولت ہے, میں کیا ہوں, میں کما رہا ہوں, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, میں جو چاہے کرتا ہوں. اس میں آ کے آدمی جائز ناجائز کے حدود کو پھلنگتا ہے. یہی ہے ناشکری اصل, یہی فرح ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اگر مل جائے تو اس میں آدمی محتاط ہو, اور اگر آدمی کو نہ ملے تو اس میں آدمی پریشان نہ ہو. مل کے چھوٹ گیا تو بھی پریشان نہ ہو. بعض مرتبہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے آدمی کو, اور نقصان ہوتا ہے تو صدمہ بھی ہوتا ہے. صدمہ ہونا الگ چیز ہے, لیکن اس کو لے کے بیٹھ جانا بالکل الگ چیز ہے. اتنا غم پال لیا, اتنا غم پال لیا جس کی کوئی نہیں. بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تجھ کچھ بھی تو نہیں تھا تیرے پاس, تو اللہ نے تجھے دیا. اب اگر ہو گیا نقصان تو پھر کیا, پھر دے دے گا, اس میں کیا ہے؟ اور اگر نہیں دے گا تو اس میں ایسی کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ بڑے سے بڑے نقصان پہ صدمہ تو ہوتا ہے, ہر ایک کو ہوگا, تو مسلمان کو بھی ہوگا, لیکن غم پال لے کے نہیں بیٹھے گا مسلمان. یہ آئے گا کر دے گا, اس کو اگنور کر دے گا, بھول جائے گا. لکھا الا تاسو علی ما فاتکم. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے چونکہ تجارت تھی ان کی, اور ان کے شپس چلتے تھے, پانی کے جہاز چلتے تھے, بہت بڑے بڑی تجارت بھی تھی. اللہ والے دونوں طرح کے گزرے ہیں, ایک وہ بھی جو میں نے سنایا تھا, ایک ایسے بھی گزرے ہیں. ان کے خادم نے آ کے عرض کیا کہ حضرت بھنور, کشتی بھنور میں آ گئی تھی, سمندر میں طوفان آ گیا, اس میں آپ کی کشتی ڈوب گئی, سامان تجارت کا جو سامان تھا وہ ڈوب گیا ہے. تو لکھا ہے کہ حضرت نے تھوڑا سا گردن جھکائی اور فرمایا الحمدللہ. لوگ خاموش ہو گئے. بزرگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی, مصیبت میں بھی الحمدللہ بولتے ہیں. پھر اتفاق سے چند دنوں کے بعد میں پھر اطلاع آئی کہ نہیں, حضرت کشتی بھنور میں تو آ گئی تھی, لیکن اللہ نے بڑا فضل فرمایا, وہ عافیت کے ساتھ میں ساحل پہ پہنچ گئی ہے, وہ ڈوبی نہیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ ڈوب گئی, تو اس بات چلا دی تھی, لیکن پتہ چلا کہ نہیں ڈوبی وہ. تو حضرت نے پھر تھوڑا سا مراقبے جیسا کیا, اس کے بعد کہنے لگے الحمدللہ. تو جو خدام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی کشتی بچ گئی, سامان جو ہے نا تجارت کا سامان ڈوبنے سے بچ گیا, الحمدللہ آپ فرما رہے ہیں, شکریہ سمجھ میں. لیکن وہ جو پانی میں ڈوبنے کی اطلاع پر آپ نے الحمدللہ کہا تھا, وہ نہیں سمجھ میں آیا. کہنے لگے تم کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا, وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. یہ بھی میں نے اس وجہ سے نہیں کہا جو تم کہہ رہے ہو, اور وہ بھی میں نے اس وجہ سے نہیں کہا تھا جو تم سمجھ رہے ہو. جس وقت کشتی کے پانی میں ڈوبنے کی مجھے اطلاع ملی, تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے یہ دیکھا کہ میرے دل پر اس کا اثر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے ایمان میں کوئی تأثر اور تغیر نہیں آیا اللہ کے ذات عالی پر نظر میں. ان کا مال تھا, میرا تھوڑا ہی تھا, یہ ان کا تھا, میرا تھوڑا ہی تھا. ان کی مرضی, اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں, اندر رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر پانی میں اندر رکھ لینا چاہ رہے ہیں تو پانی کے اندر رکھ لے رہے ہوں گے, اوپر رکھ لینا چاہ رہے تو اوپر رکھ لیتے, میرے پاس رکھتے تو میرے پاس رکھتے, کسی اور کے پاس رکھنا. آپ سامان لے کے آتے ہیں دکان سے, شاپنگ کر کے سامان لاتے ہیں, تو آپ کس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں سامان, کون سے جو ہے نا ڈرا میں رکھنا چاہتے ہیں, کون سی الماری میں رکھنا چاہتے ہیں, کون سے کمرے میں رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. تو ان کا مال ہے, انہوں کہاں رکھ لینا چاہ رہے تمہارے, تو اگر انہوں نے اندر پانی میں ڈال دیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے اندر تبدیلی تو نہیں آئی اس کی وجہ سے, تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس پر اپنے دل کی سلامتی پر میں نے الحمدللہ کہا کہ میرا دل محفوظ رہا تأثر سے, کسی قسم کا اثر میرے دل نے نہیں لیا کشتی کے ڈوب جانے پر. اور جب کشتی ساحل پہ عافیت سے پہنچ گئی, یہ اطلاع مجھے ملی, تو پھر میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ بہت خوش تو نہیں ہو گیا اس سے. کہنے لگے نہیں, یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے عافیت کے ساتھ میں پہنچا دیا ہے. پھر بھی میرے اندر کوئی اکڑ, کوئی ایسی چیز میں نے زیادہ محسوس, کوئی تغیر میں نے محسوس نہیں کیا. اس کو توحید افعالی کا ایک کمال بولتے ہیں, صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے کہ توحید افعالی میں ضرر اور نفع اور کسی کا اپریشیٹ کرنا, کسی کا برا بھلا کہنا, سب چیزوں کا تأثر ختم ہو جاتا ہے. وہ کیفیت تھی حضرت کی. تو اس پر حضرت نے فرمایا الحمدللہ. تو تقدیر جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے, آج کی رات تقدیر کی رات ہے اصل میں, وہ تقدیر اس لیے بتائی جاتی ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل ہیں, اور جو مصلحت ان کی ہوگی وہ کریں گے, افراد کے ساتھ یا مجموعے کے ساتھ, ملکوں کے ساتھ یا قوموں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمانوں کے ساتھ, جو ان کا وہ ان کی حکمت ہے. تقدیری نظام الگ ہوتا, تشریعی نظام الگ ہوتا. تشریعی شریعت والا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کو تشریعی نظام کہتے ہیں. ایک تکوینی نظام ہوتا ہے, اس کو یہ ملنا ہے اس کو یہ نہیں ملنا ہے, اس کو یہ نقصان ہے اس کا یہ فائدہ ہے, اس کو کامیاب ہونا ہے اس کو فیل ہونا ہے, اس کا تختہ گرنا ہے اس کا تختہ اٹھنا ہے, اس حکومت کو اوپر لانا ہے اس کو ہرانا ہے اس کو جتانا ہے, یہ پورا نظام تکوینی کہلاتا ہے. یہ دونوں نظام اللہ ہی کے ہوتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو مصلحت ہے ان کے پاس وہ چیز ظاہر ہوتی رہتی ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو اس لیے آج کی رات میں جہاں دعا کا اہتمام کرنا ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل بنانا ہے, اللہ سے مدد لینے کی رات ہے. مدد لینا جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے, تو استعانت صرف دعا کرنے کا نام نہیں ہے. دعا کرنا استعانت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے, اور استعانت جو ہے وہ حاجتوں میں کی جاتی ہے. حاجت جو ضرورت آدمی کو پیش آ رہی ہے اس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے, جو بھی انسان کی حاجتیں ہوتی ہیں ان حاجتوں میں. لیکن انسان پر جو احوال آتے ہیں وہ صرف حاجتوں کی شکل میں نہیں آتے, اس لیے ان میں استعانت کی شکلیں بھی الگ ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت جو ہے نا اس میں استعانت الگ ہے, نعمت جو ہے نا اس میں استعانت الگ ہے, کاروبار وغیرہ جو ہے نا اس میں استعانت الگ ہے, گناہوں کی جو حالت ہوتی ہے اس میں استعانت الگ ہے. یہ استعانت کی شکلیں الگ الگ ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سب شامل ہوتا ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس میں استعانت ہی توکل ہے. توکل استعانت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اپنے معاملات میں اللہ پر نظر رکھنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اپنے رزق کے معاملے میں بھی, اپنے احوال کے معاملے میں بھی, اپنے کاروبار کے اندر بھی, اپنی کمائی کے اندر بھی. آدمی جو کما رہا ہے, میں کما رہا ہوں, میرے کو کسی اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانے وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں جو ہے نا کچھ بھی کوئی ایک آدھ اسکرو ڈھیلا کر دیے بولے تو قصہ ختم ہو جاتا, کمائی کا پورا نظام چل جاتا, پیرالائز کر دیے تو ہو گیا, سامنے والے کے دل میں مخالفت ڈال دیے تو انہیں فائر کر دیتا, کچھ بھی بہانہ بنا کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ محنت کر کے پیسے جیب میں لے کے آ رہے تھے, گن پوائنٹ پہ کھینچ لیا کوئی آدمی, قصہ ختم ہو گیا. وہ قصہ مشہور ہے نا, ایک آدمی جو ہے نا گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا, اپنے دوست سے کہنے لگا جا رہا ہوں بازار, کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑا خرید رہا ہوں. تو بولے انشاءاللہ بول تو اچھا گھوڑا مل جائے گا. کہے کہ انشاءاللہ کی کیا بات ہے, پیسے میرے جیب میں, گھوڑا بازار میں, وہاں جاؤں گا وہ پیسے دوں گا گھوڑا خرید لے کے آ جاؤں گا, اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ وہ خدا کی کہنی ہوگی کہ جب گیا تو کسی نے جیب کاٹ لیا, وہاں سے بغیر گھوڑے کے واپس آ گیا. کہنے لگے لا لیا گھوڑا؟ کہنے لگے نہیں انشاءاللہ میں جا رہا تھا, وہ انشاءاللہ میرا جیب کٹ گیا, وہ انشاءاللہ میں گھوڑا دیکھنے ہی والا تھا, بات بات کو انشاءاللہ لگا رہا. وہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ انشاءاللہ کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے. معاملات میں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا, یہی استعانت ہے, اور تکلیفوں میں صبر, یہ استعانت ہے. بیماری میں, تکلیف میں صبر کرنا, واستعینوا بالصبر, صبر سے مدد مانگو, یعنی صبر کرنے کے ذریعے سے مدد لو, کیونکہ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہو جاتا ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر میں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, فیصلے کو قبول کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرنا. صبر بغیر تقوی کے خالص مصیبت ہے. صبر ہو اور دینداری نہ ہو وہ مصیبت ہے, وہ صبر نہیں ہے. ہمیشہ وہی صبر کار کا کام کرتا ہے جس کے ساتھ تقوی ہوتا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا, یہ ہے نا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. صبر کی حقیقت میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے کوئی حکم اللہ رب العزت کا نہیں توڑنا. نماز چھوڑ دی, کوئی تکلیف آ گئی نماز چھوڑ دی, सबर कहाँ रहा हो, उसको तुम नहीं सबर करो, नहीं सबर, नमाज को नहीं बोल रहा है बस सबर करो, रोने नहीं दे रहा है, कहेंगे सबर करो सबर, इस सबर से कुछ नहीं होने वाला है। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ा के फिर सबर करो कि तलखीन करो, वो फ़ायदा होने वाला है। और रोना मना नहीं है, दुखेगा तो दिल दिखोगे तो रोएगा बंदा, रोना मना नहीं है, रोना सबर के खिलाफ नहीं है। लेकिन अल्लाह से शिकायत करना ये सबर के खिलाफ है। हम ही मिले थे आपको, अब सबको आप मज़े में रखे हुए हैं, हमारे को मुसीबत में डाले हुए हैं। जैसी कैसी बातें आदमी उस सदमे में बोलने लगता है, अल्लाह ताला से लड़ने लगता है और अल्लाह से शिकायत करने लगता है, बल्कि बास तो पूरे बाहसे थे मजमू पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से शिकायत अल्लाह से करते हैं कि उनके वास्ते तो हुरो कसूर यहीं पे भी हैं, हमारे वास्ते खाली वादे हो रहे, बोले उनको देखो इतना दिया है खाने को पीने को पहनने को इधर उधर सफ़र करने को ट्रांसपोर्टेशन को और हर किस्म की सहूलत है, अय्याशियाँ हैं और यहाँ हमारे साथ मुसीबत है। बाद लोग पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने शिकवे शिकायत की। जिस हालत में मुसलमान है उस हालत में जिस तरह से इसको रखा गया है ना, ये बहुत बड़ा इनाम है। वरना मुसलमान को हक नहीं है इस तरह से भी रहने का। हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई आदमी आके मुसलमानों के हालात की शिकायत करता तो बोले बस अल्लाह मियां से का शुक्रिया अदा करो, हम तो इस काबिल हो गए हैं अपने अमलों से कि हमको पत्थरों से मार के ख़त्म कर दिया जाए, हमारे ऊपर आग बरसा दी जाए, हमारे तो अमल वैसे हो गए हैं। तो अभी हमको खाने पीने को छोड़े हुए हैं, थोड़ा सा तौबा करने का मौका दिए हुए हैं, इसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो बोलते थे। गैरों का जो अल्लाह तबारक व तआला का गैरों के साथ अल्लाह का जो सलूक है वो अलग है, मुसलमानों के साथ जो अल्लाह का सलूक है वो अलग है, ये पहचानना चाहिए। असल अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत को जानना होता है। हर एक के साथ बर्ताव अलग है, मुसलमानों के साथ अलग बर्ताव है, गैर मुस्लिमों के साथ अलग बर्ताव है अल्लाह पाक का। गैरों के साथ ये उसूल है कि उनको दुनिया में ढील दी जाएगी, ज़रहुम या अकलो या तो मत खाओ, उनको खा लेने दो पी लेने दो इंजॉय कर लेने दो, फसफ़ आलमून बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, क्योंकि उनको वहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ढील है। और कुरान पाक में यहाँ तक फरमाया गया कि मुसलमानों की खातिर से उनको इतना ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं जितना देना चाह रहा था, क्योंकि इनका ईमान और ख़राब हो जाएगा। अलौला यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर ये बात ना होती कि सारे के सारे बेईमान हो जाएंगे तो लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, तो रहमान के साथ कुफर करने वालों के लिए हम कर देते, लिबुयूतिहिम सुकुफ़ुम मिन फिद्दा, उनके मकानात के छतों को चांदी का, व मआरिजा, और उनके मकानात की सीढ़ियों को चांदी का बना देते, वलिबुयूतिहिम अबवाबं वसुरूरन अलैहा यत्तकीऊन वज़ुख़रुफ़ा, और उनके घरों के दरवाजे और उनकी खिड़कियाँ और उनकी मसेरियाँ ये सोने की होती। मगर मैं अगर उनको ऐसा देता तो हर कोई ये सोचता कि कुछ लेना है तो बेईमान बनो, तो ईमान वाले अपना ईमान ख़राब कर लेते। तो मुसलमानों का ईमान ख़राब नहीं होना बोल के उनको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे 25वें पारे में है। अपन इसके बावजूद अभी ख़राब कर ले रहे अपना ईमान, हमारा ईमान ख़राब नहीं होना बोल के उन्होंने उनको कम दिया, और हम इसके बावजूद अपना ईमान ख़राब कर रहे हैं कि भाई कुछ चाहिए तो ये मजहब वसब छोड़ो यार, ये पाबंदी से नहीं होता कुछ काम। जितना ज़्यादा उनके साथ मुशाबात इख्तियार करेंगे, उनके रंग में रंगेंगे, तो चुप चार चार पैसे मिल सकेंगे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनके साथ अल्लाह पाक का मामला ढील का है, मुसलमान के साथ ये है कि अगर दीन पर पक्का रहा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तेबा में रहा तो फिर उनको भी गुलाम बना के रखेंगे, जो ऐसे जिनको इतनी सहूलत दी गई है ना वो भी तुम्हारे खादिम बन के रहेंगे, क्योंकि हमने दुनिया बनाई ही तुम्हारे वास्ते, मगर उस वक्त तक है वो जब तुम हमारे रहो। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिन अर्रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीन आमनू, हम उनको देते ज्यादा हैं लेकिन बनाए तुम्हारे लिए हैं, ये कुरान पाक में है, हमने बनाया तुम्हारे लिए है, और इनको और तुमको दोनों को इस्तेमाल की इजाज़त दुनिया में है, दुनिया की नेमतें खालिसतन यौमुल क़ियामा, क़ियामत के दिन खालिस ईमान वाले ही हमारी नेमतों को इस्तेमाल कर सकेंगे, दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इस दुनिया के अंदर इजाज़त है। तो अगर हम दीन पर रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की इत्तेबा में रहे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया की नेमतें हमको देंगे, चूँकि आखिरत के मुकाबले में वो कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए वो फिर भी हमारे वास्ते कुछ शुमार में नहीं है, वो और वो भी हमारे खादिम बन जाएंगे जिनको हम समझ रहे हैं कि उनको बहुत कुछ मिला है, वो हमारे ताबे बनने ही के लिए हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम है ये। लेकिन अगर हुजूर की मुखालफत मुसलमान करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। मुसलमान इस राज को नहीं समझ रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह का मामला ये है, क्योंकि आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं, आप अल्लाह के तर्जुमान हैं, आप अल्लाह के कमालात के मज़हर हैं, आप अल्लाह की मर्जियात को बताने वाले हैं। आपको अल्लाह ताला ने गोया नुमाइंदगी के तौर पर दुनिया, क्योंकि अल्लाह को तो कोई देख नहीं सकता, अल्लाह से कोई बात नहीं कर सकता, अल्लाह से कोई मिल नहीं सकता, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता, तो इस सब के कामों के लिए अल्लाह ने अपनी जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है नुमाइंदा बना के। आप अल्लाह नहीं हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं, भेजे हुए हैं। उनके साथ इतना सेंसिटिव है मामला अल्लाह पाक का कि जब तक उन पर कोई ईमान नहीं लाया उसको ढील है। समझो मुसलमान भाइयों, मुझे और आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है और अपने औलादों को समझाना है और मुआशरे को भी समझाना है। जो ईमान नहीं लाया ना उसको कुछ भी नहीं बोलते, वो हुजूर को गाली दे नहीं बोलेंगे, बेअदबी करे नहीं बोलेंगे, बदतमीजी करे नहीं बोलेंगे, तकलीफ पहुंचाए नहीं बोलेंगे, उसको कुछ नहीं बोलते। पूरी तारीख जो है ना मक्के मुकर्रमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देख लीजिए तो इसकी तर्जुमान है। आपको जादूगर कहा गया, आपको काहिन कहा गया, आपको झूठा कहा गया और जन वाला, आपको मजनून और पागल कहा गया, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपको मारा गया, आपको झिड़का गया, आपके रास्ते में कांटे डाले गए, आपके रास्ते में गिरासत फेंकी गई, आपकी पीठ पे ओझड़ी डाली गई, आपके गले के अंदर फंदा डाल के आपको घसीटा गया और आपको सताया गया, आपके पीछे गुंडे लगाए गए, आपके पीछे बच्चों को पत्थर मारने के लिए लगाया गया। पूरी तारीख यही है, कुछ भी नहीं बोल रहे अल्लाह में। हालांकि आप अल्लाह के हबीब हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, सैयदुल आदम हैं, इमामुर रसूल हैं, रसूलों के रसूल हैं। हालांकि आप आए आखिर में, लेकिन आप सब पहले नबियों के भी रसूल हैं, ये कुरान पाक में है। इतना बड़ा मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि कुछ भी नहीं बोल रहे। हत्ता के सबसे बड़ा वाकया ताइफ में पेश आया हुजूर के साथ, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ को कभी नहीं भूलते थे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो सख्त अहवाल गुजरे हैं उसमें सबसे सख्त दिन कौन सा था, सख्त वक्त कौन सा था? तो आप फरमाया कि ताइफ नहीं भूल सकता, ताइफ नहीं भूला जाता, ताइफ आप पर बहुत शकील गुजरा, बहुत ही सख्त था। एक तो पैदल गए आप, चूँकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और भी पहाड़ी रास्ते से गए, ताइफ पहाड़ी रास्ते से गए तो पता चलता क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद जो है वहाँ जाने के बाद में उन लोगों ने जो किया आपके साथ में सलूक किया वो इतना तकलीफ़ देने वाला था। उस वक्त कोई सहारा भी नहीं था, अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया था, खदीजा का भी इंतकाल हो गया, जो दोनों बड़े सहारे थे वो भी नहीं रहे थे, अब तन्हा हो गए थे। ज़रूरी था आपको कि कोई आपको ठिकाना दे और मौका काम करने का आपको मौका फराहम करे। ईमान वालों के लिए दो कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन में रहना ज़रूरी है, ये याद रख लो। या तो खुद दीन की मेहनत करते रहो, या दीन की मेहनत करने वालों को ठिकाना दो और उनके साथ काम करो। ये दो ही शर्तें हैं। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू बिअमवालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आबौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। जो लोग ईमान लाए और फिर अपनी जानो माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में निकले मेहनत के लिए, और जिन लोगों ने इनको ठिकाना दिया और इनकी मदद की, यही कामयाब होने वाले हैं। वल्लज़ीन आबौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। पूरी तरतीब मुसलमानों की यही हमेशा ऐसी रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ठिकाने की ज़रूरत थी और नुसरत की ज़रूरत थी, तो आप ताइफ गए थे यही कहने के लिए कि मैया अबीनी, कौन मुझे ठिकाना देगा, मैया सुरूनी, कौन मेरी नुसरत करेगा, मुझे काम करने का मौका कौन देगा? कोई साथ देने वाला होगा तो बंदा काम करेगा, नहीं तो कैसे करेगा ज़ाहरी असबाब के अतबार से। तो उन लोगों ने बदतमीजी की, सबको पता है वो वाकया पूरा दोहराना नहीं है, और न सिर्फ बदतमीजी की, फिर ये हुआ है कि आपके पीछे गुंडे लगा दिए, शरीर बच्चे लगा दिए, वो पत्थर मारते थे आपको, छोटे कंकर नहीं मारते थे, बड़े पत्थर मारते थे, आपको लहूलुहान कर दिया, इतने मारे आपको, इतना खून बहा कि आपके पूरे जिस्म से खून बहते 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 आपकी जूतियों में आके फंस गया, आपकी जूतियाँ आपके पैरों में फंस गई खून की वजह से, जमने की वजह से आपके खून मुबारक, और हत्ता कि आप पर बेहोशी भी तारी होगी, वो सब कुछ। उस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से दुआ निकल गई, जो वैसी दुआ इससे पहले आपने कभी नहीं की थी। बस यहाँ तक आप पहुँच गए, आपने फरमाया कि अल्लाह मियां ये क्या हो गया मेरे साथ, आपने मुझे किसके हवाले कर दिया, इलामन तकिलनी, अल्लाह ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ, आपने किसके हवाले मुझे कर दिया, पूरा जुमला है आगे तक की दुआ है वो। उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेज दिया जिब्रील इस्लाम के साथ, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप बोले तो इनको मार देते, दो पहाड़ों के बीच में इनको पीस देंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, मगर यहाँ एक बात समझने की है थोड़ी सी, वो क्या, वो ये कि इनकी इस बदतमीजी पर अगर अल्लाह मियाँ को मारना होता तो वो हुजूर से पूछते कि क्यों थे। कभी गौर किया हमने इस हदीस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि भाई आप चाहे तो कर दो, क्या मतलब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के चश्मे अबरू को जानते थे, यानी आपके मंशे को पहचानते थे बहुत। मेरे पास भेजने का मतलब ही यह है कि छोड़ो इनको, आपकी शान रहीमी को, आपके रहमतुल आलमीन होने को जाहिर करना भी था, लेकिन अगर उनकी उनको सजा ही देना होता तो पूछने आपके पास फरिश्ते देने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो तो तसल्ली देना मकसूद था, वो हो गई तसल्ली। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईमान नहीं लाने वाले के साथ अल्लाह ताला का मामला अलग है, जो हुजूर पर ईमान नहीं लाया उसको अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। अच्छा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहाँ सहाबे किराम का मजमा तैयार हो गया, जमा हो गए, सब हिजरत कर करके जमा होते गए, ईमान ला लिए, मरकज तैयार हो गया पूरा। अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आपके बारे में जिम्मेदारियां मुसलमानों को नाजिल फरमाना शुरू कर दें, ईमान वालों तुम नबी के सामने आगे नहीं बढ़ सकते, वो अगर चल रहे हैं तुम उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं कर सकते, अगर तुम अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ऊंचा करोगे तो तुम्हारे अमल हब्त कर दूंगा, नमाज रोज़ा सदका ज़कात सब खत्म कर दूंगा, मेरे पास ये इतनी बड़ी बुरी चीज़ है। अंतह बता अमालुको वान तुम ला तशऊरून, अगर किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी है, मुलाकात करनी है, तो दरवाजे पे जाके आवाज़ नहीं देना कि हुजूर आपसे बात करना है, तशरीफ लाइए। इन्ना लजीना युनादून का मिन वराइ अल-हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, जो लोग हुजरे के बाहर से आपको पुकारते हैं वो बेअक्ल हैं। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, अगर लोग सब्र कर लें यहाँ तक कि खुद आप तशरीफ लाएं फिर उसके बाद मुलाकात कर लें, तुम्हारा ये हौसला कि तुम हुजूर को बुला रहे दरवाजे पे दस्तक दे के, मकाम पहचाना कौन है, हैसियत जानी कौन है, इज़ा नाजी तुम रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदी नजवाकुम सदका, अगर तुमको रसूल से बात करनी हो तो पहले सदका करो, ऐसे अहकाम आए, अजीब हुकूक है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी औला बिलमिन मिन अनफुसिहिम, नबी का ज्यादा हक है ईमान वालों उसके पास, ईमान वालों पर उनकी जान से भी ज्यादा, एक आदमी का अपनी जान पर जितना हक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आदमी पर उसकी जान से ज्यादा हक है। अब मसला यहां पर यह है कि यह मर्तबा और ये शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब बनाए अल्लाह ताला या पहले से है, आपकी ये शान पहले से है, आप हबीबुर रब्बुल आलमीन पहले से हैं, आप सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन पहले से हैं, आप सैयदुल वल्दे आदम पहले से हैं, आप साहिबुल मकामिल महमूद पहले से हैं, आप साहिबुल शफ़ातिल कुबरा पहले से हैं, आप साहिबुल हौद वल कौसर पहले से हैं, साहिबुल लिवाइल हम्द पहले से हैं, आपका यह मकाम पहले से है, आप हबीब पहले से ही हैं अल्लाह पाक के, लेकिन अब ये बात क्यों लाई जा रही है, अब मानने वालों का एक ग्रुप तैयार हो गया, आपको पहचान लिया, आप पर ईमान ले आए, तो ईमान लाने के बाद में फिर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, फिर बेअदबी बर्दाश्त नहीं होती। तो ईमान वालों को जो सब्र का हुक्म दिया जाता है वो तकवे के साथ दिया जाता है कि शरीयत की पाबंदी हो उसके साथ में सब्र करो, गुनाह मत करो उसके साथ सब्र करो, तो फिर अल्लाह की मदद आई, सब्र करना अल्लाह ताला की मदद लेने का जरिया, इस्तेआनत का जरिया है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, साबिरीन को अजर जो है बगैर हिसाब का दिया जाने वाला है, सबर बड़ी अजीब दौलत है। ऐसी जो नेमतें बंदे को हासिल हों तो उसमें अल्लाह ताला से इस्तेआनत का तरीका क्या है, मदद लेने का, वो शुक्र करना है, नेमतों में शुक्र ही इस्तेआनत है, लेकिन शक्कर तुम लाजीद नियमत बढ़ेगी कब? शुक्र करने पर तो मदद ले रहे हैं तभी तो बढ़ रही ना वो नियमतों में शुक्र इस्तेआनत है, मुसीबतों में सब्र इस्तेआनत है, मामलात में तवक्कुल इस्तेआनत है, गुनाहों में तौबा इस्तेआनत है। गुनाह हो गए माफी मांगो अल्लाह ताला से, क्या मतलब शर्मिंदगी हो और छोड़ दें उस गुनाह को और आइंदा नहीं करने का आज़्म हो, और जिनकी वजह से गुनाह हो रहे हैं उनको छोड़ दे। अलहदगी इख्तियार कर ले, जिस जगह गुनाह में मुब्तला हो रहा है आदमी, जिनके साथ बैठ के कोई आदमी शराब पीता है वो करता है, जब तक उनको छोड़ेगा नहीं तो कैसे छोड़ेगी उसकी शराब। ये लिखा है साहिब रिसाले कुशेरिया ने उसके असबाब अव्वल में से, सबब अव्वल उसका ये है तो उसको छोड़ दे आदमी। गर्ज यह है कि तौबा करना ज़रूरी है, किसमें? गुनाहों के अंदर, ये इस्तेआनत है। तो आज की रात मेरे बुजुर्गों अल्लाह तबारक व तआला से तौबा की रात है और अल्लाह ताला से मांगने की रात है कि अल्लाह मियाँ पता नहीं हमारी किस्मत में आप क्या तय फरमा रहे हो तो अभी, लेकिन हमारा काम चूंकि मांगने का है, हम तो फकीर ही हैं, भिखारी हैं, और पूरी इंसानियत भिखारी है और पूरी मखलूक भिखारी होती है, और अमीर है वो भी, शाह है वो भी, गदा है वो भी, सब खास आम इसमें कोई बराबर, सब बराबर होते हैं, सब फकीर हैं। आयुन्ना संतमुल फ़ुक़रा इलल्लाह, तो मांगना है अल्लाह तबारक व तआला से। इस मांगने के अंदर ये भी एक शक्ल है कि अपनी हाजतों में दुआ करना और गुनाहों के अंदर तौबा करना, जो हाजतें हैं वो मांगो, छोटी बड़ी सब दुल्ला कच्चा चिट्ठा अल्लाह पाक के सामने रख देना चाहिए। दुआ करने में शर्माना नहीं, जो आदमी के लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए खैर का दरवाज़ा खुल गया। दुआ मुखुल इबादा है, इबादत का मगज़ है। अरे जाओ किस्मत में मिलने वाला है वही मिलेगा, मैं दुआ करा तो क्या, नहीं करा तो क्या। हमको दुआ इस वजह से थोड़ा ही करना है कि जो किस्मत में नहीं है वो मिले, हमको दुआ इसलिए करना है कि इबादत है ये, और इबादत करने के तो हम पाबंद हैं, इबादत हमारी जिम्मेदारी है, इबादत अल्लाह तबारक व तआला का हक है ये, और वो उसका जो मगज़ है उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर देर तक बहुत लंबी लंबी दुआ करने की आदत होना, वो तबलीग के इज्तिमा में जो कर देते वो नहीं, क्योंकि वो उस आदमी के लिए करने का है जो अकेले में खूब लंबी दुआ करने वाला हो। हम अकेले में तो दो मिनट की करते और इज्तिमा की दुआ जो दुआ होती है वो आधे घंटे से ज़्यादा तक चले जाते। ताला शान होने मेरे दोस्तों ये मुजीबात रहमत बनाए हैं। देखो अल्लाह पाक से हम जो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अस्अलुका मुजीबात रहमतिक, अल्लाह हम आपसे आपकी रहमत के मुजीबात मांगते हैं। रहमत डायरेक्ट क्यों नहीं मांग रहे भाई, डायरेक्ट भी मांगते हैं तो रहमत भी मांगना होता है, रहमत के मुजीबात भी मांगना होता है। रहमत को वाजिब करने वाली चीज़ें, साबित करने वाली चीज़ें, असबाब रहमत जिनको कहते हैं, यानी वो आमाल जिन आमाल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उम्मत को बताया गया, आप पर वही के ज़रिए से उम्मत को दिखाया बताया गया कि ये काम करना है, ये मुजीबात रहमत कहलाते हैं। आमाल नबवी जो हैं, आमाल नबूवत जो हैं, वो मुजीबात रहमत हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आमाल दिए गए इबादत की लाइन से, मामलात की लाइन से, मुआशरत की लाइन से, अखलाक की लाइन से, और दीन की मेहनत की लाइन से, दीन की मेहनत जो है ना ये मुजीबात रहमत में से है, हुकूक में से भी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास हुकूक में से है। दीन की मेहनत करना, उसके लिए अपना पैसा भी लगाना और उसके लिए अपना माल भी लगाना। हमारे माल में अल्लाह ताला के दीन के फैलने का हक है, हिस्सा है, और हमारी जान में अल्लाह ताला के दीन के फैलने का हिस्सा है, यानी हमारे माल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में शिरकत का हिस्सा है, और हमारी जान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम का हिस्सा है जो आपका काम था। क्यों? इस वास्ते कि आप खातिमुन नबीय्यीन हैं और आप आलमी नबी, आलमी नबी होने की वजह से सारा आलम, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब पूरी जगहों पर आपका पैगाम पहुंचना ज़रूरी है, जबकि आप खुद नहीं गए पूरी जगहों पे। कहाँ गए आप? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबुक तक गए, फिजिकली आप नहीं गए, दो सफ़र आपके लंबे, एक ये तबुक तक का सफ़र, एक दूसरा सफ़र है जिसको सारी दुनिया जानती है, वो पूरे यूनिवर्सल का सफ़र था, वो पूरी कायनात का सफ़र था, वो मेराज का जो सफ़र था, बैतुल्लाह से आप बैतुल मुकद्दस गए, फिर वहाँ से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जन्नत और जहन्नम भी, फिर उसके साथ सिदरतुल मुंतहा भी, जहाँ से कायनात शुरू होती है वहाँ पर भी आप गए, और उससे आगे अल्लाह पाक ने बुलाया मोहम्मद और आगे और आ जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे हुजूर तशरीफ ले जाइए आप। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे मौके पर एक दोस्त अपने दोस्त को छोड़ता है कहीं, आप ऐसी जगह पर आके बोल रहे हैं कि आप जाइए। बोले हुजूर ये छोड़ने की बात नहीं है, ये मजबूरी की बात है, मैं जा ही नहीं सकता आगे, अगर बाल बराबर भी आगे मैं बढ़ूंगा तो चल जाऊंगा, ये तो आपका हौसला ही, आप जा सकते हैं। अगर ये अक्सरे मुँह ये बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे मैं बढ़ूंगा तो तजल्ली की ज्यादती से मैं जल जाऊंगा, तो आप जा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे रफरफ लाया गया, तख्त रफरफ लाया गया मेरे लिए, और मैं उस पर बैठ के जिब्राइल को छोड़ने के बाद, जहाँ जिब्राइल नहीं जा सकते थे, मैंने 70,000 हिजाबात तय किए, और हर हिजाब का दरमियान का फासला आसमान से ज़मीन तक का था, हर एक हिजाब का फासला आसमान से ज़मीन तक का था। मैंने ऐसे 70,000 हिजाबात पार किए जहाँ से कि जिब्राइल के कदम रुक गए थे। आप अंदाज़ा फरमाइए, एक सफ़र आपका वो भी हुआ है, वो मौजज़ाती सफ़र था, वो दलील नबूवत का सफ़र था, ये कार्य नबूवत का सफ़र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं, और आपकी आपका काम पूरे आलम में पहुंचना है, और आप कयामत तक के लिए नबी हैं। 1,500 साल तो वैसे हो गए, आप रहे कुल 23 साल, और कयामत और पता नहीं कब तक आएगी। हर 100 साल में नया ब्याच इंसानों का आता है, पूरा ग्रुप जाके दूसरा ग्रुप आता है, 100 साल में ग्रुप पूरा चेंज हो जाता है। अब यहाँ जितने बैठे हुए इसमें एक भी नहीं है 100 साल वाला, और 100 साल के बाद में ये पूरा नक्शा ही बदला हुआ रहता, कौन रहता है यहाँ पे 100 साल के बाद, इसमें से एक भी नहीं रहेगा। बहुत कोई किरास करा साल 102 साल 104 साल का हो गया तो बड़ा करामत होगी बोलते, अपन तो खुद 50-50, 40-40 के बैठे हुए, अपन 100 साल के बाद कह रहे थे। आलम इसबाब में अल्लाह ताला की कुदरत में तो सब कुछ है, लेकिन बता रहा हूँ मैं, 100 साल में ब्याज बदल जाता है पूरा का पूरा। तो कियामत तक जितने इंसान आएंगे सब तक हुजूर का पैगाम पहुंचना है, हुजूर का काम पहुंचना है, एलाए कलिमतुल्लाह की मेहनत पहुंचना है, दावत इलल्लाह पहुंचना है। तालिबीन हो बेतालब हो बेतलब वालों, मुसलमान मुकद्दम है, मुसलमान मुकद्दम होता है, गैर मुस्लिम मुअख्खर होता है मुसलमान से, गैर मुस्लिम पहले नहीं होता। यह भी राज बहुत कम लोग जानते हैं। अरे भाई तुम लोग मुसलमानों में कहीं को फिरते, गैर मुस्लिमों में जाओ, गैर मुस्लिम पे जबर नहीं है, मुसलमान पे जबर है। क्या मतलब? मतलब बात का ये है, उधर जाना नहीं है मुझे लंबा इस वक्त में, लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूँ गलत फहमी दूर हो जाने के लिए। वो ये है कि एक आदमी मुसलमान नहीं हो रहा है ना, तो उस पर लाइक रहा फिर दीन है, दीन में जबर नहीं, ईमान इख्तियार करता है, ईमान इख्तियार करे, कुफर इख्तियार करता है, कुफर इख्तियार करे, जो कुफर इख्तियार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन जो ईमान ला चुका है उसके लिए जबर है, उसको जबरदस्ती नमाज पढ़वाना है, उसूलन उसूलन तो जबरदस्ती है, करते नहीं तबलीग वाले क्योंकि ताकत नहीं है इनके पास, वरना जो बेनमाजी है उसको जेल में डालना है ना, अभी मसले के एतबार से, मसले के एतबार से बेनमाजी को जेल में डालना है, और वो भी तौबा करने की मोहलत देने के लिए। तो अगर जबर नहीं है तो क्यों जेल में है भाई, छोड़ो उसकी खबर में उन्हें जवाब देने वाला है, पढ़ता है तो पढ़ेंगे नमाज, नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ेंगे, जेल क्यों है इस्लाम में? अगर इस्लामी हुकूमत हो, इस्लामी कानून हो तो जेल है, क्यों है सब ये? अगर जबर नहीं है तो कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको कोड़े मारना है, अगर जबर नहीं है तो पिटाई कहीं कोई, कोई चोरी कर लिया तो हाथ काट देना है, जबर नहीं है तो ये हाथ काट देने का क्या है? कोई बदकारी कर लिया तो उसको जान से ही मार देने का है? इसका मतलब ये बना है कि एक आदमी मुसलमान हो गया है तो फिर तो उसको करना ही करना है दीन पर अमल, नहीं करता है तो उसको डंडा मार के कराऊं अमल। उसूली तौर पर अमर जो है ना आर्डर को बोलते हैं, अमर बिलमारू का मतलब है पढ़ता नमाज क्या फोड़ू सर, इसको बोलते हैं असल नमाज की दावत, असल ये है, मगर हम नहीं कर सकते ऐसा। मुसलमान मुसलमानों में कुव्वत नाफिजा नहीं होने की वजह से, पावर नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उससे जो कम दर्जे का है दावत खैर वो तो कर सकता है। तो इसलिए इस्लाम मुसलमान जो है वो मुकद्दम होते हैं तबलीग में और दावत में गैर मुस्लिमों के मुकाबले में। इनसे आपको फरागत हो गई है और इनसे आपके पास और ज्यादा सोर्सेस हैं कि इनमें भी कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुछ दूसरों में भी काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन तरजीह के एतबार से देखा जाए तो ये पहले है। इसीलिए आप देखेंगे कि हजरत अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में जितने भी आए सब मुसलमानों में आए, तौरात पर अमल कराने के वास्ते नबी आते थे पूरे। उस जमाने पे तौरात पर ईमान लाने वाले सब क्या थे? मुसलमान थे। उन्हीं पे आए, हजारों पैगंबर आए बनी इसराइल में, वो गैर मुस्लिमों में थोड़े आए, उन मुसलमानों में आए। उस जमाने के मुसलमान वही थे। तो दीन की मेहनत करना ये हिस्सा है, और खैरात करना, सदक़े का सदका करना, गरीबों की मदद करना, ये दीन की मदद में शामिल नहीं होता। ये सवाब का काम है, ये कुरबात है, ये वो भी काम मुसलमान को करना है। गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम कर देना, यतीमों की परवरिश का इंतजाम कर देना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर देना, आफात और बलाओं के अंदर हादसात में जो लोग आ गए हैं उनकी मदद कर देना, इसमें हमारे माल का हिस्सा, हमारे माल में से उसमें जाना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये कुरबात कहलाते हैं, ये सदकात हैं, ये नुसरत दीन में नहीं आता। ये नुसरत दीन में ये है कि आप उन तक पहुंच के अपने जान और माल से उनको अल्लाह की तरफ बुलाना, जिसमें दीन की जिसमें दीन का तादिया होता है, दीन मुतादी होता है, एक से दूसरे को पहुँचता है, तालीम उसमें आएगी, किताबों का छापना उसमें आएगा, तकरीर लेक्चर उसमें आएंगे, नुसरत दीन में ही आएंगे, क्योंकि इससे फैलता है दीन। और जो सवाब के काम है उसे वो फैलने की चीज़ नहीं होती, वो तो अल्लाह तबारक व तआला के पास सवाब की चीज़ है आपके वास्ते। तो ये चीज़ है, तो नुसरत करना भी हमारे जिम्मे है ये चीज़। तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने का दाइया आज अपने अंदर लेके जब आदमी तौबा करेगा और जो हालात आदमी पर आए हुए हैं उन हालात में अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर सब्र कर, यानी हालात पर सब्र करेगा और उसमें अल्लाह तआला के हुक्मों को पूरा करने का जज्बा और नीयत भी अपने साथ में बनाएगा, तकवा साथ में होगा, मदद अल्लाह पाक की आएगी। और जो मुकद्दरात हैं उन मुकद्दरात में अल्लाह तबारक व तआला की रजा, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर राजी रहना, रजा बिल क़ज़ा, तस्लीम और तफवीज़, और उसी से तवक्कुल का ताल्लुक बनता है। तवक्कुल उसी से जुड़ी हुई चीज़ है, असल में असल तवक्कुल अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहने का है। तो वो चीज़ जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला से मदद लेने के रास्तों में से है। पर ये बात इस पर चल पड़ी मेरे दोस्तों कि आज की रात हमारे लिए इस माना कर बड़ी अहम होती है मुसलमानों के वास्ते कि ये आज की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास फैसलों की रात होती है। दो रातें आती हैं साल में, एक आता है एक जो रमज़ान में शब-ए-क़दर जो होती है, उसका ताल्लुक भी इससे बताया जाता है। इसीलिए जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, बाद मुफस्सिरीन उसे शब कदर ही मुराद लेते हैं, लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने इसे शब बारात ही मुराद ली है अपने बयानात वगैरह के अंदर। उन्होंने इस पर बाज़ाब्ता एक वाज़ भी उनका पाया गया है, बहुत दिन पढ़े का पढ़ा हुआ है, तो उसमें उन्होंने शब बारात ही से उसकी तफसील फरमाई है। गर्ज यह है कि ये दो रातें होती हैं, एक रमज़ान के अंदर आने वाली होती हैं और ये लैलतुल निस्फ मिन शाबान है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास रहम के फैसले भी होते हैं। हत्ता कि हदीसों में आता है कि बनू कल्ब की जो बकरियाँ हैं, बनू कल्ब जो है ना कबीला था अरबों का, जिनके जो बकरियों के बारे में बहुत स्पेशल थे कि बहुत ज़्यादा उनके कबीले में बकरियां होती थी, बकरियों ही क्या उनका गुजर था, तो उनके ऊपर जितने बाल होते हैं उनके बकदर अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमाते हैं आज की रात। तो इसलिए आज की रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ी की, बख्शिश की रात है। अलबत्ता कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला जिनकी बख्शिश को रोक दिया जाता है, शब कदर में भी रोक दिया जाता है, ख़ास मौक़ों पर भी रोक दिया जाता है, शब बारात में भी रोक दिया जाता है। उसमें से एक वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन के नाफरमान को कहा जाता है इसको रोक दो। किसी के साथ में ख़ास हिक्द और दुश्मनी पालने वाला है उसको कहा जाता है कि भाई इसको भी रोक दो, ये मामला सही कर लेने दो अपने बंदों के साथ, दिल साफ कर लेने दो अपना, उसके बाद माफ़ करेंगे इसका। शराबी को रोक दिया जाता है कि शराब से तौबा कर लेने दो इसको, अगर ये तौबा करेगा तो इसको माफ़ किया जाएगा, नहीं और अगर ये पीता रहेगा तो फिर इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है कि जो उम्र ख़वाइश है, और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक ने अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाया है कि जो जितनी दुनिया में पिएगा मेरी इज्जत की कसम उतनी जहन्नम की पिला के रहूँगा, इल्ला है कि तौबा कर ले, तौबा करके मर गया तो बच गया समझो, नहीं तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। और ज़ाहिर है कि जन्नत में रख के उसको जहन्नम से ला के तो नहीं पिलाएंगे ना, तो जब जहन्नम की पीना पड़ेगा तो जहन्नम में ही जाके पीना पड़ेगा उसको, तो जहन्नम में जाना इस बंदे का यकीन ही हो जाता है अगर बगैर तौबा के मर गया तो, और अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा के फरमाया हुआ है। तो इस वजह से ये ऐसे ख़ास गुनाह हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से خاص خاص موقعوں پر بھی بندوں کی بخشش روک دی جاتی ہے, اللہ پاک ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے. تو اس لیے میرے دوستو بھائیوں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا فیوچر میں آدمی کو ابھی سے عزم کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کی روشنی میں, کہ بھائی مجھے اپنی زندگی میں اب نظر ثانی کرنی چاہیے, میں کب تک اس حالت میں رہوں گا, مجھے توبہ کر لینی چاہیے, مجھے ذکر فکر میں لگ جانا چاہیے, مجھے اپنی غفلت دور کر دینی چاہیے, مجھے اپنا ماحول بدل دینا چاہیے, مجھے اپنے دوستوں کا سرکل بدل دینا چاہیے. میری مصروفیت جیسی اس وقت چل رہی ہے اس کا جائزہ لے کے آدمی اس کو صحیح کر لے. تو ایک فیوچر کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ آج کی اس مبارک رات میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلے کرا لینا ہے ڈھنگ کے, تو اس کے اعتبار سے رونا پلانا منت سماجت کرنا خوب گڑ گڑانا اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا کہ نہیں وہ تو قدرت والے ہیں, اور دعا جو ہے نا وہ تو تقدیر کو بھی بدل دے سکتی ہے, وہ دعا سے جو چاہے فیصلہ کر دے سکتے ہیں, وہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر کچھ بھی چیز لگا دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے, فیصلہ ہے یہ صحیح ہے, لیکن اس فیصلے کے ساتھ میں کچھ ایسے بعض مرتبہ چیزیں جوڑ دیتے ہیں اللہ پاک بندے کے بندے پر رحمت کے واسطے, تکا لگا رہے ہیں جس کو بولتے ہیں, بعض چیزوں کے ساتھ میں جوڑ دی جاتی ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز طے کر دی گئی تھی وہ تو تھی, لیکن اس سے آپ کو راحت کی شکلیں نکل آتی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے نا, آپ کو یاد سنایا تھا میں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی کہ بہت غربت ہے, بہت پریشانی ہے, میرے لیے کچھ کرو, اور میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ذریعہ معاش نہیں ہے. تو جو بہت روئی بہت پلائی تو کہنے لگے, اچھا ایسا کرو ایک بار, یہ جو تمہارے پاس بکری کا بچہ ہے نا اس کو بیچنا مت, بس یہ چیز تم پکڑ لے کے جاؤ مضبوط, مطلب میرے جب حالات یہ رہیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گی بچے کو, میرے بکری کے بچے کو بیچ دوں گی. ایک بکری تھی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا, تو حضرت نے فرمایا یہ جو بکری کا بچہ ہے اس کو مت بیچ. کیا بات ہے, کیوں بولے, پر اندر ہر چکو یا دین کو یا. آگے جب گئے تو اتفاق سے بادشاہ کی سواری جا رہی تھی, بادشاہ کی سواری میں بادشاہ کی نظر وہ بکری کے بچے پہ پڑی. وہ بہت پھدکتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں, منمناتے ہیں, بہت پیارے لگتے ہیں, ہر جانور کا بچہ اچھا لگتا ہے, بکری کا اور بھی اچھا لگتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے اس کو لے لو. تو وزیر آ کے بولا, بادشاہ سلامت یہ بچے کو خریدنا چاہ رہے ہیں. انہیں بولے میں نہیں بیچتی, کیونکہ وزیر ذہن میں تھا. حضرت بولے اس کو بچے کو مت بیچ, کچھ بھی ہوگا بچے کو مت بیچ. بادشاہ بول رہے ہیں تم کو اتنے پیسے دیں گے, کچھ بھی دو میں نہیں بیچتی. اور زمانے کے بادشاہ زبردستی نہیں لیتے تھے, راضی کرنا ضروری ہوتا تھا. یہ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تجھ کو میں نے وزیر کہہ کے لیے بنایا ہے, کچھ جگاڑ لگا اس کو, کچھ راستہ نکال اس کا. اب انہیں جا کے منت کر رہا, سماجت کر رہا, پیسوں کا آفر کر رہا, کچھ بھی کر رہا, انہیں بری میں نے دیتا. تو وزیر کے ذہن میں آیا کہ حضرت ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, بادشاہ سے بولا اس بڈھی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے پاس محل میں, وہاں رکھ لیتے ہیں, بچہ بیچنے کو تیار نہیں ہے. تو بولے ٹھیک ہے, اس کو بچے کو لے دیتے. انہیں آ کے بولا کہ دیکھو ایسا کرو, تم بچہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں مت دو, تم ہمارے پاس آ کے رہ جاؤ محل میں, شاہی محل میں رہ جاؤ بادشاہ کے پاس, کھانا پینا وائش آرام سے رہنا, اور بکری کا بچہ بھی تمہارے پاس ہی رہنا, خالی ہمارے بادشاہ سلامت کو کھیلنے کے واسطے تھوڑی دیر اگر ہم لے کے جاتا ہوں بولے تو لے جانے دینا, پھر میں گھنٹے بھر میں دو گھنٹے میں لا کے دے دیتا ہوں وہ بچہ. بولے تو بولے ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ منظور ہے بولے میرے. تو اس کو بادشاہ کے محل میں لے کے گئے, وہاں پہ اس کو شاہی محل میں رکھے, کھانا پینا بڈھی کا سب آرام سے رہا, بکری کا بچہ اس کے پاس میں تھا. وہ بادشاہ کے دل میں بچی کے بچے کی ایسی محبت آ گئی, وہ جوڑا تھا وہ نظام الدین اولیاء جو لگا دیے تھے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے. تو وہ ایسا اس کو بولتے جوڑ لگا دینا. تو حق تعالیٰ شانہ جو ہے بعض تقدیری نظاموں میں ایسے جوڑ لگا دیتے دعا سے, وہ اس کا جوڑ کچھ ایسا ہو جاتا کہ آدمی کا جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے, حل بھی اس کا نکل آتا ہے دوسرے راستوں سے. وہ چاہے تو اصل چیز کو بدل دیں, ان کو کون روکنے والا ہے, لا یسأل عما يفعل, وہ جو چاہے کرے ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور اگر وہ چاہے تو اپنے نظام کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اندر ایسا راستہ نکال دیں وہی چیز آدمی کے لیے پسندیدہ ہو جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیماری سے آدمی ناخوش ہے وہ بیماری پسند ہو جاتی ہے اس کو, اس بیماری کا کوئی فائدہ اس کے ذہن میں ایسا آ جاتا ہے, اسے اس پہ خوش ہو جاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتا ہے کہ یہ بیماری رہنا میرے ساتھ. وہ صحابیہ کا قصہ ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, ایک بوڑھی عورت کی طرف اپنے شاگردوں سے, کہ جس کو جنتی عورت دیکھنا ہے وہ اس خاتون کو دیکھو. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس خاتون کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, میں وہاں پہ تھا. بولے اللہ کے رسول, حضرت عباس سے فرمایا لوگوں نے, ان کے خادموں نے, कि क्या वाक्य हुआ था। तो कहने लगे, यह खातून हुजूर के पास आई और कहने लगी कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, फिट्स आते हैं और उस वक्त मेरे कपड़े जिस्म से हट जाते हैं, मगर मुझे होश नहीं रहता। बाद में मुझे लोग बताते हैं कि मेरे जिस्म से कपड़े हट गए थे, तो बड़ी बेइज्जती महसूस करती हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए आपकी, ये मिर्गी का दौरा मुझे ना पड़ा करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूंगा और तुम्हें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं दुआ नहीं करूंगा और तुम्हें यह दौरा पड़ता रहेगा। तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, अगर आप दुआ ना करें और यह दौरा मुझे पड़ता रहे तो मुझे क्या है उस पर, क्यों आप ऐसा फरमा रहे हैं? तो मैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुझे दौरा यह पड़ता रहा और तू सब्र कर ली तो तेरे लिए जन्नत है, उसका मैं वादा करता हूँ, तो तुझे जन्नत मिलेगी। तो कहने लगे, हुजूर मेरे लिए दुआ मत कीजिए, इसको दौरा पड़ने दीजिए मेरे। फिर उसके बाद में ये अर्ज किया कि एक गुजारिश है, वो ये कि जब मुझे ये फिट्स आया करें तो मेरे कपड़े ने हटा करें, ये दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ, ये दुआ मैं कर देता हूँ। और आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जब इसको ये दौरा पड़े इसके कपड़े ने हटा करें। साहबा फरमाते कि पूरी जिंदगी उसको बार बार दौरे पड़ते थे, कभी कपड़े हटते नहीं थे उसके जिस्म से, और उसकी उसको खुशी थी, दौरा पड़ता था उसको खुशी थी कि हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया है जन्नत का। तो अल्लाह पाक तकदीर पर ऐसे राजी कर देते हैं, जो जो बीमारी है उस पर ऐसे राजी कर देते हैं, मिजाज बना देते हैं वैसा, खुशी उसी में कर देते हैं। हयात तय्यबा का राज असल में यही है, जिस हालत में है उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला एक लज्जत, एक चाशनी, एक हलावत पैदा कर देते हैं। गरीब को गुर्बत के साथ, बीमार को बीमारी के साथ, और जो हालत जिस बंदे के लिए अल्लाह ताला पसंद फरमा लेते हैं। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक रात में अल्लाह ताला से तौबा भी करनी है अपने गुनाहों की, और तौबा की शक्लों में से सबसे बेहतरीन जो है ना, वो सलात तौबा की होती है और सलात तस्बीह की होती है। पहले तो आदमी दुर्गा सलात तौबा पढ़े, फिर दो पढ़े, बार बार पढ़े, और सलात तस्बीह पढ़ ले, क्योंकि सलात तस्बीह की बशारत में यह है कि उसमें सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक उसकी तरगीब दी है कि अगर तुमसे उम्र में एक मरतबा भी पढ़ी जाए तो पढ़ लेना, मगर आप अंदाजा फरमाइए, अगर कोई रोज़ ही पढ़ ले तो इससे अच्छी क्या बात है, कोई जुमा पढ़ लिया करे तो इससे अच्छी क्या बात है। तो सलात तस्बीह है, और सलात हाजत भी पढ़ना है। बुज़ुर्गों के बाद मखसूस दुआएँ भी आज की रात में मनकूल हैं, कोई सुन्नत नहीं है, वो तजुर्बात हैं, और कुछ इस्तेफादा किया हुआ होता है, इस्तिनारा बोलते हैं उसको, नूर हासिल करना होता है नुसूस से। वो ये कि चूंकि अल्लाह तबारक व तआला से मखसूस दुआ करना होता है एक एक बात की, एक एक चीज़ की, बात बुजुर्गों ने इसका तजुर्बा किया कि बहुत सी दुआएं एक साथ करने पर भी अल्लाह देते हैं, लेकिन आप किसी खास चीज़ को स्पेसिफिकली मांगे कि मुझे ये चाहिए और उसके लिए खास शर्त पूरी करें, तो वो दुआ खासतौर पर कबूल होती है। तो उस तजुर्बे की रोशनी में बाद बुजुर्गों का यह मामूल मनकूल है किताबों में कि दो रकात नमाज पढ़ें और उसके साथ में यासीन शरीफ पढ़ें, उन दोनों रकातों में अगर याद हिफ्ज है तो नमाज ही में पढ़ लें, और अगर हिफ्ज याद नहीं है तो नमाज के बाद पढ़ें, उसके बाद एक दुआ कर लें खास जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम समझ रहे हैं आप, और फिर दो रकात पढ़ें, फिर एक दुआ करें, फिर दुआ करें। आमतौर पर किताबों में जो लिखा हुआ है बुजुर्गों के, वो तीन मरकजी तौर पर दुआ वाले करने के आदि रहे हैं। एक तो यह है कि अपनी उम्र की तिवालत की दुआ करना, जिंदा रहेंगे तो कुछ काम हो सकेगा, जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या काम होगा। तो पहले दो रकात नमाज पढ़ो, फिर उम्र की तिवालत की दुआ करो, फिर दूसरे बाद दो रकात नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद सेहत की और आफियत की दुआ करो, और दो रकात और नमाज पढ़ो, फिर उसके साथ रिस्क की, वसात की और बरकत की दुआ करो। ये मामूल किताबों के अंदर आमतौर पर बुजुर्गों के लिखा हुआ है, लेकिन हर आदमी के हालात अलग अलग हैं। किसी को अल्लाह ने बहुत रोजी दी हुई है और उसके बारे में ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत नहीं है मिसाल के तौर पर। और फिर ये कि पहले ज़माने में फितने नहीं थे, इस ज़माने में फितने हैं। पहले ज़माने में ईमान पर इतनी मुसीबतें आई हुई नहीं थी, इतनी ज़माने में मुसीबतें ईमान पर आई हुई। पहले दीन इतना आजमाइश में नहीं फंसा हुआ था बंदे की, जैसे इस वक्त अपना दीन आजमाइशों में फंसा हुआ है। हमारा दीन इस आजमाइशों में किस किस एतबार से इस वक्त फंसा हुआ है मेरे दोस्तों, मौका नहीं है इसका, बे इंतहा खतरे में है। अपने दीन की सलामती, अपने ईमान की सलामती, अपनी इज्जत की सलामती, अपनी सेहत की सलामती, फितनों से बचाओ, इसके लिए मखसूस दुआ होनी चाहिए। और जो किसी की खास ज़रूरत है, किसी के फर्ज करो किसी के घर में शादी होना है बच्चों की, बच्चियों की, वो उनके लिए दो रकात नमाज पढ़ के दुआ कर लें। बच्चों का एडमिशन का मसला है, तालीम का मसला है, किसी का इमिग्रेशन का मसला है, और किसी के जनाब वाला किसी और चीज़ का मसला है, नौकरी का मसला है, उसके वास्ते। तो चूंकि ये रात है ही इस मशगले की, तो इस वजह से पूरी रात जागकर आदमी को ये इसका अहतमाम करना चाहिए कि मुख्तलिफ दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे। और फिर यह भी मुस्तहब है कि आज की रात कब्रिस्तान जाया जाए, इसके बाद अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल होने की वजह से उलमा ने पसंद फरमाया है। जो अपने इंडिया पाकिस्तान के उलमाए किराम जिस चीज़ को बोलते रहे हैं ना शुरू से, उसको मजबूती से पकड़ लो, वो काफ़ी है। एक दो हैं वहाँ पे, एक तो बिदत वाले तौर तरीक़े हैं, पटाखे हैं, खिचड़े हैं, ये हैं वो हैं, उनसे तो बचना चाहिए। एक वो है जो उलमाए किराम ने बयान फरमाए, खासतौर पर जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वगैरह की जो फजाइल अय्याम व शुहूर वगैरह हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली रिवायतें और हदीसें बुजुर्गों की तरफ से मनकूल है, बुजुर्गों के वाकयात में भी इनका जिक्र मिलता है। आजकल उनके इनकार पर जहन चला हुआ है, फितनों में से एक फितना ये भी है कि किस किस बात का दीन के इनकार कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश निकालना, अरे ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वैसा नहीं है मेरे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है वो सही है, उनके पास तहकीकी इल्म है इन बातों का। आज की रात जो है ना वो कब्रिस्तान जाना चाहिए अगर मुमकिन हो, और उनके लिए दुआ मगफरत का अहतमाम करना है और ईसाले सवाब करना चाहिए, वहाँ फातिहा पढ़ना चाहिए वहाँ जाके। मतलब उसका ये होता है कि आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह कुल पढ़ें, उसके बाद उसका उसका सवाब जो है ना उनकी रूह को पहुँचा दें। ईसाले सवाब बरहक है, पूरे अहले सुन्नत वल जमात के पास मुत्तफक आले है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। शाफई, हम्बली, मालिकी, हनफी सब के पास है ये, पूरे अहले सुन्नत वल जमात के पास है। अब जो ईसाले सवाब का इनकार करने वाले हैं वो इन यानी अहले सुन्नत से हट के बोलने वाले लोग हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात से, वरना ईसाले सवाब बरहक है। उसका जो मखसूस तरीका बिदअतियों में राइज हो गया ना, उसको मना किया जाता है। एक ख़ास किस्म के तरीके लोगों ने ईजाद कर लिए जो अपने इंडिया पाकिस्तान वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, वो नहीं है, बिदअत वाली शक्ल में नहीं करने का है। बाकी आप मज़ार पर जाएं, वहाँ जाने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, नहीं जाना हुआ यहीं से पढ़ दें और सूरह इखलास पढ़ दें, फिर उनकी रूह को उसका सवाब पहुँचा दें, चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा के पहुँचाएँ, चाहे डायरेक्ट पहुँचा दें, हर दोनों सूरतों में इजाज़त है उसकी। और आयतें याद हों वो पढ़ के भी बख्श दें, जैसे सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के बख्शने की भी फजीलत आई है, सूरह तकासुर की भी फजीलत आई है कि सूरह तकासुर कब्रिस्तान में पढ़ने से, सूरह ज़िलज़ाल कब्रिस्तान में पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होता है, और एक एक हज़ार आयतों का सवाब जो है ना अरवाह को मिल जाता है उसके ज़रिए से, और वो हमारी दुआओं के मुंतज़िर होते हैं, सबसे ज़्यादा मुंतज़िर होते हैं, खाली शब बारात में नहीं, शब बारात के अलावा दूसरे दिनों में भी। और वो रूहें आती जाती नहीं कुछ, ये भाई शब बारात को रूहें आती हैं, लिहाजा पटाखे मार मार के उनको भगाओ, ये चला हुआ है जाहिलों में, अगर आते हैं तो उनको भगाना क्यों चाहिए, इतनी अच्छी बात थोड़ी है, ये तो ख़राब बात होगी ना, आते हैं तो उनका तो इस्तकबाल होना चाहिए था। तो ना तो ये सही है कि रूहें आती हैं, और ना उसकी वजह से करना ऐसी चीज़ें करना, या मुबारक रात है तो खुशी मनाना चाहिए, रोशनियाँ करना चाहिए, पटाखे छोड़ना चाहिए, वो भी नहीं है। तो जो बिदाते हैं, जो नामुनासिब हरकतें हैं, उनसे तो बचा जाएगा, लेकिन ज़ाती तौर पर इनफरादी तौर पर इबादत कर लेना रात तमाम जाग के, कल छुट्टी ले लेना मौका मिल गया तो, अगर नहीं हो सकता है तो, और कल का रोज़ा भी रख लेने का है दूसरे दिन सुबह का। फ़ज़ाइलुल अय्याम व शुहूर में इन सब चीज़ों का बयान है, मुहद्दिसीन का बयान किया हुआ है, तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको। और फिर कब्रिस्तान भी जाके उनके लिए दुआ इसाले सवाब करना, दुआ करना वो है। अल्लाह तबारक व तआला जो है मुझे भी और आपको भी इस रात की पूरी कदर करने वाला बना दे, और हक़ तआला शानहु आज की रात में हमारे हक़ हमारे लिए बेहतर से बेहतर फैसले फरमाएँ, और हमारे ख्वाहिश के मुआफिक फैसले फरमा दें, क्योंकि अपने को अपनी ख्वाहिश मांगने में तो कोई नहीं, राजी तो रहना है हर फैसले पर, लेकिन मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, उन्होंने मना मांगने को मना नहीं किया है, इसलिए आदमी को बहुत अहतमाम से दुआ करना चाहिए, इंफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी हो जाए थोड़ी बहुत दुआ, तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। जरूर शरीफ पढ़ो। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وتعالى أن نصلي عليه وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد أوراق الأشجار وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد أزهار الأشجار وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد أثمار الأزهار وأغصان الأشجار وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد ذرات الرمل وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد قطرات الماء
وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الملائكة وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الأرواح وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الجان وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد كلمات الله ومداد كلمات الله وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم الطف في تأثير اللهم الطف بنا يا لطيف. اللهم الطف بنا يا لطيف. اللهم الطف بنا يا لطيف. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما دیجئے. دانستہ و نادانستہ جتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیے ہیں اور ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے پروردگار آپ کی نعمتوں کو ہم نے استعمال کیا اور اسی میں ہم نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ آپ کی طرف سے کسی بھی اطلاع کا ہم صحیح امتحان نہیں دے پائے. اے اللہ اور آپ کے احکام کی بجاوری میں ہم سے بے پناہ کوتاہی ہوئی. اللہ کے آپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم سے پورے نہیں ہوئے. بندوں کے جو حقوق آپ نے لگائے اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اور ہمیں اس پر بہت ہی شرمندگی ہے. اے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. ہمیں ندامت ہے اس پر. اے اللہ ہم احتیاط کریں گے آئندہ. اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. صغیرہ کبیرہ سارے معاف فرما دیجئے. خلوت و جلوت کے سارے معاف فرما دیجئے. اندھیرے اجالے کے سارے معاف فرما دیجئے. جاہ اور باہ کے سارے معاف فرما دیجئے. ہم نے اپنے اعضاء سے جو گناہ کیے ہیں
आँखों से, कानों से, जुबान से सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह माल में जो हमसे गुनाह हुए हैं उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। बंदों के हकूक़ में जो कोताही हुई उन सबको माफ़ फरमा दीजिए और उनकी अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। आपके हकूक़ में जो कोताही हुई उन सबको माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। और गुनाहों की जो नहूसतें हैं अपने फजल से उनको भी दूर फरमा दीजिए अल्लाह। गुनाहों की जो नहूसत हमारी जान पर पड़ गई उसको दूर फरमा दीजिए। हमारे मालों में जो उसको नहूसत हमारे गुनाहों की आ गई उसको अपने करम से दूर फरमा दीजिए। हमारी औलादों में जो हमारे गुनाहों की नहूसत आ गई उसको माफ़ फरमा दीजिए। और हमसे मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं उसमें जो नहूसतें हमारे बदामलियों की आ गई उनको माफ़ फरमा दीजिए। और सारे आलम में हमारे गुनाहों की जो नहूसत फैल गई उसको दूर फरमा दीजिए अल्लाह। सारे आलम का निज़ाम आपने उम्मत मुस्लिमा के अमाल के साथ में जोड़ दिया और उम्मत मुस्लिमा ने अपने अमाल ख़राब कर लिए तो निज़ाम आलम भी बिगड़ गया। परवरदिगार अपने करम से इस नहूसत को दूर फरमा दीजिए, इस निज़ाम आलम को सही फरमा दीजिए। सारी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। हम तमाम की मगफरत कीजिए, हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे वालिदैन में जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनकी भी मगफरत फरमा दीजिए और जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी भी मगफरत फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार जो अपने कब्रों में पहुँच गए उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। जो मुसलमान कब्रों में पहुँच गए उन सबको माफ़ फरमा दीजिए। जो बूढ़े बूढ़ियाँ अपने कब्रों में पड़े हुए उनको माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। ये बूढ़े अपनी कब्रों में अल्लाह सिर्फ आपके रहमत के मुंतज़िर हैं, उसे आप उनकी नज़र सिर्फ आपकी रहमत पर है। और कौन है परवरदिगार उनका? ऐ अल्लाह अपने करम से उनकी लफ्जिशों को, उनकी ज़िल्लतों को माफ़ फरमा दीजिए और उनके हसनात को कबूल फरमाइए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। ऐ मौला करीम उनकी मगफरत फरमा दीजिए, हमारे तमाम रिश्तेदारों की मगफरत फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा दीजिए, करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमाइए, बरकत नाजिल फरमाइए अल्लाह। जिनके वालिदैन हयात हैं या जिनके दोनों में से एक हयात हैं ऐ परवरदिगार उनकी भी मगफरत फरमा दीजिए और उनको खुश करने वाला बना दीजिए, उनको खुश रखने वाला हमें बना दीजिए अल्लाह। उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा दीजिए, उनकी हयात को सआदत समझना नसीब फरमा दीजिए, उनकी खिदमत को अपना सबसे बेहतरीन अमल समझना अल्लाह हमारे फहम में दाखिल फरमा दीजिए, उन पर जान माल को लगाने की सआदत और खुशी नसीब फरमा दीजिए। ऐ करीम आका अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के अकदार को ज़िंदा फरमा दीजिए। इस माशरे में माँ बाप की जो कदर घटती जा रही है परवरदिगार अपने फ़ल करम से उम्मत मुस्लिमा को उस मुसीबत से और इस आवारगी से बचा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी औलादों की बेहतरीन तरबियत फरमाइए, ऐ मौला हमारी औलादों की बेहतरीन तरबियत फरमाइए, उनको बुरी आदतों बुरी सोहबतों से बचा लीजिए, नेक आदतों का खूगर बना दीजिए। ऐ अल्लाह नेक आदतों का खूगर बना दीजिए, नेक तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। हमारी औलाद जिस तालीम जो भी तालीम हासिल कर रही है उसमें उनको कामयाब फरमा दीजिए, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हों तो भी कामयाब फरमा दीजिए और जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी कामयाब फरमा दीजिए, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उनका हिफ्ज़ आसान फरमा दीजिए, जो आलिम का कोर्स कर रहे हैं उनको आलिम बना दीजिए। ऐ मौला करीम हमारे औलाद के तमाम उमूर को अल्लाह बख़ैर अंजाम फरमा दीजिए और हमारे तमाम उमूर में अल्लाह हुस्न खातिमा और आक़िबत अच्छी हमारी फरमा दीजिए। करम का मामला फरमाइए, रहम का मामला फरमाइए अल्लाह, नरमी का मामला हमारे साथ में फरमाइए, मेहरबानी का मामला परवरदिगार हम तमाम के साथ में फरमाइए अल्लाह। हम लोगों में से जिनके घरों में बच्चियाँ शादी के काबिल हैं अपने फ़ल करम से उनकी शादियों का बेहतरीन इंतज़ाम फरमा दीजिए, अच्छे जोड़े नसीब फरमा दीजिए, आफियत के साथ में उनकी शादियों का इंतज़ाम फरमा दीजिए। लड़के जिनके शादियों के काबिल हैं उनके लिए बेहतरीन शादियों का इंतज़ाम फरमा दीजिए, अच्छे जोड़े नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। जिनको नौकरियाँ होना है उनको अपने फ़ल करम से मुलाजमतें नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। जिनकी मुलाजमत चल रही है उसमें पुख्तगी पैदा फरमा दीजिए, इस्तेहामत पैदा फरमा दीजिए, तरक्की अता फरमाइए अल्लाह। मुकद्दर की रोज़ी सहूलत से आसानी के साथ अता फरमाइए, बरकत वाली हलाल रोज़ी के दरवाज़े को शादा फरमा दीजिए। ऐ मौला करीम हम तमाम को सेहत अता फरमाइए, उनको तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमाइए। जिन बीमारियों में हम मुब्तला नहीं हैं अल्लाह उनसे हमें बचाए ही रखिए और जिनमें हम मुब्तला हो गए हैं अल्लाह उनसे शिफा नसीब फरमा दीजिए। जितने रूहानी अमराज हैं उनसे भी शिफा नसीब फरमाइए, जितने जिस्मानी अमराज हैं उनसे भी शिफा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। आप ही शाफी मुतलक है, शिफा का ख़जाना आपके पास लामहदूद है। ऐ मौला अपने फ़ल करम से हम तमाम को सेहत और शिफा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। इस वक्त जो वबाई मरज़ पूरी दुनिया में फैला हुआ है अल्लाह उस मरज़ से हमको, हमारी मस्तूरात को, हमारे बच्चों और बच्चियों को, सबको बचा लीजिए और पूरे उम्मत मुस्लिमा को बचा लीजिए। और जैसे नए नए अमराज इतने ज़ाहिर होते जा रहे हैं परवरदिगार, اے اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ تمام فتنوں سے ہمیں بچائیے. مسیح الدجال کے خصوصیت کے ساتھ فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. اللہ اس فتنے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اس فتنے میں اپنے ایمان کو بچانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. پروردگار اپنے کرم سے اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, اور اس کے آنے سے پہلے جتنے فتنوں کا جال اس وقت بچ گیا ہے ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. تمام مبلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. ظاہری فتنوں سے بھی بچائیے, باطنی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم, حیا اور مماد کے فتنے سے بچا لیجیے, گناہوں کے فتنے سے بچا لیجیے, بے حیائی کے فتنے سے بچا لیجیے, حرام خوری کے فتنے سے بچا لیجیے, حرام کاری کے فتنے سے بچا لیجیے. اے مولا ہر قسم کے فتنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. علمی گمراہیوں سے اور علمی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. عملی گمراہیوں سے اور عملی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. معاشرے کی خرابیاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے. دین کی محنت میں ہم سے پوری امت مسلمہ سے جو کوتاہی ہوئی اور ہو رہی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے, اور دین کی محنت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے کلمے کی بلندی کی کوشش میں حصہ لینے والا ہم سب کو بنا دیجیے. اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے. ہماری جانوں کو اس کے لیے قبول فرمائیے, ہمارے مالوں کو اس کے لیے قبول فرمائیے. دور اور دیر کا سفر کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. دین کے لیے وقت نکالنا اور سفر کرنا اے اللہ اسے وہ ہمیں مرغوب فرما دیجیے, اس سے ہم کو محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی سب سے زیادہ محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے, آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے, آپ کے دین کی محنت کی محبت اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائیے. تمام ایمانی صفات سے مزین فرمائیے. رضائل نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ نفس میں جتنی گندگیاں ہیں ان تمام کو دور فرما دیجیے. ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے. اے اللہ آپ ہی تزکیہ فرما سکتے ہیں, آپ ہی تزکیہ فرمانے والے ہیں, آپ ہی مربی حقیقی ہیں, آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے. اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے, ہمارے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ آخرت کی تمام گھاٹیوں اور عقبات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اللہ دنیا کو بھی آسان کر دیجیے, آخرت کو بھی آسان فرما دیجیے. یہاں کی مصیبتوں سے بھی بچا لیجیے, وہاں کی مصیبتوں سے بھی بچا لیجیے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ہم کو شامل فرمائیے, ان کے جھنڈے تلے جمع فرمائیے. اللہ صحابہ کرام کے ساتھ حشر فرمائیے, ان کے جھنڈے تلے جمع فرمائیے. کفار اور منافقین اور فساق اور دہریوں اور گنہگاروں اور فراعنہ اور قیاصرہ کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر نہ فرمائیے. اے مولا کریم, جس دن آپ اے اللہ مجرموں کو اور مومنوں کو الگ فرما دیں گے, فرما برداری کرنے والوں کو نافرمانی والوں کو الگ کر دیں گے. مولا آپ سے بے انتہا عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر, ہماری توبہ کو قبول فرما کر, ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرما کر. اللہ نیکوں میں ہم کو شامل فرما لیجیے, ہمارا نیکوں کے زمرے میں ہمارا شامل ہمارا شمار فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلا دیجیے, آپ کی شفاعت والے وہلے میں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ کل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے. اے مولا کریم, نام اعمال دائیں ہاتھ میں مرحمت فرمائیے. یا اللہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلہ فرما دیجیے, جہنم سے بچا دیجیے. اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو جہنم سے بچا دیجیے, ہمارے گھر والوں کو جہنم سے بچا دیجیے. اے اللہ کل کے دن خسارے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے, ہمارے بس میں نہیں ہے پروردگار. اے اللہ یہ محض آپ کی مدد اور نصرت ہی سے ہو سکتا ہے. قدم قدم پر ہم آپ سے آپ کی تائید مانگتے ہیں, غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ موت اور ما بعد الموت میں برکت فرما دیجیے, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائیے, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اور دنیا کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے, ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہماری تمام ضرورتیں پوری فرمائیے, ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ہم اتنے خالی ہیں پروردگار کہ ہمارے پاس وہ کاسا ہی نہیں ہے, وہ پیالہ ہی نہیں ہے جس میں بھیک مانگی جائے. اے پروردگار بس فضل فرما دیجیے, ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ سے آپ کی مہربانی مانگتے ہیں, آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں. اے پروردگار فضل فرما دیجیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فضل فرما دیجیے, ان کے طفیل میں فضل فرما دیجیے, ان کی برکت سے رحم فرما دیجیے, ان کی امت میں ہونے کی لاج رکھ لیجیے. اللہ آپ کے حبیب کے ہیں, جیسے بھی ہیں لیکن آپ کے حبیب کی امت میں ہیں. اے پروردگار ہم پر نظر رحمت فرما لیجیے, ناراضگی کی نظر ہم سے ہٹا لیجیے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجئے, دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ پورے عالم کے دشمنوں سے حفاظت فرمائیے, پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, اسلام دشمنوں سے, مسلم دشمنوں سے. اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجئے, اے اللہ ان کے اندر دین پہنچا دیجئے, ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے ہمارے ساتھ بہت سلوک ہیں, یہاں بہت سہولتیں ہم کو حاصل ہیں ان کی وجہ سے. اے پروردگار ہمارا ان کے ساتھ میں سلوک یہ کر دیجئے کہ ان کو ہدایت مل جائے, ہمارے کو ذریعہ بنا دیجئے, ہمیں ذریعہ فرما دیجئے ان کی ہدایت کا. اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے, ان کو ایمان کی توفیق دے دیجئے. اللہ ان کو بھی حق کے اندر داخل فرما لیجئے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, اور ہم تمام کو ہدایت عامہ اور تامہ نصیب فرما دیجئے, اور پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے, اور پوری دنیا میں یا اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرما دیجئے, حق کی جڑوں کو جما دیجئے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے, باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے, تمام فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے اپنے کرم سے وہ ہمیں نصیب فرمائیے, اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ بر و بحر میں, خشکی اور تری میں, اور حرمین میں, اور جہاں کہیں بھی آپ کے ولی آپ سے دعائیں فرما رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کو آپ قبول فرما رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے, اور ہماری ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.